निश्चय ही आज रात बहुत से लोगों को देखकर बहुत ही खुश हूँ। पिछली रात को मध्य रात्रि तक आपको रोके रखने के बाद मैंने नहीं सोचा था कि आप सब यहाँ पर होंगे, लेकिन ऐसा दिखाई देता है जैसा आप संडे स्कूल को आएंगे, और यही बहुत अच्छी बात है। अब हम अध्ययन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम इस कलीसिया के सिद्धांत पर अपने समय को लें, और मैं इसे सिखाना चाहता हूँ। और अब हमारे साथ कुछ अजनबी लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। मैं यहाँ इस भवन में अधिक नहीं रहता हूँ, यह नहीं जानता कि कौन कलीसिया के सदस्य हैं, लेकिन मैंने यह घोषणा की थी कि यह केवल हमारे कलीसिया के सदस्यों के लिए होगा, क्योंकि बाहर के लोगों के पास विभिन्न सिद्धांत और इत्यादि बातें हैं, तो वे इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें उन बातों पर विश्वास करने के लिए सिखाया गया है। और जब आप किसी और कलीसिया के अंदर आते हैं और बिल्कुल इसके विपरीत कुछ तो सिखाया जाता है, तो तब वे सोचते हैं और कहते हैं, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। देखा, तो हमारा मतलब किसी को आघात या दुख पहुंचाना नहीं है, हमारा इसे करने का कारण होता है। अब आप जो भी आप करना चाहते हैं उस पर विश्वास करें, लेकिन हम मैं इसे रखता हूं और इससे आप मजबूत बनते हैं, क्योंकि हमें इसे बहुत ही मजबूत करना होगा। यही है वो जिस पर भवन खड़ा होता है। देखिए, बस उसी बात के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और इस वजह से हम नहीं चाहेंगे कि आप ठोकर महसूस करें और सोचें कि हम आपके विश्वास को आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या इसी तरह से कुछ। यह इस तरह से नहीं है, और यह एक हम इसी के इर्द गिर्द लगभग 2 या 3 वर्षों से होकर बताते आए हैं, और जिसके लिए हम खड़े हुए हैं, केवल ये सिद्धांत जिसके लिए हम खड़े हैं और हम क्यों करते हैं जो कुछ है, क्योंकि हम इसे विश्वास करते हैं। और इसलिए यदि यहाँ कोई अजनबी है जो कलीसिया के सदस्य नहीं है, हमें निश्चय ही खुशी होगी इस सुबह और आज रात को भी इस वार्तालाप में बैठे हुए हैं तो। और फिर बुधवार सुबह को सभा में नियमित मुहिम को आरंभ करेंगे, मेरा मतलब यहाँ भवन पर। और मैं कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए दूर गया था। मैं सचमुच वास्तव में थका हुआ था और मुझे कहीं तो दूर जाना था ताकि कुछ समय के लिए विश्राम करूं, और अब मैं वापस आकर अच्छा महसूस कर रहा हूं और बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूं। सो मैं फिर से जा रहा हूं। जैसे ही ये समाप्त होता है, मैं जनवरी तक वापस नहीं आऊंगा। मैं किसी भी सभा के लिए नहीं जा रहा हूं। मैं निरंतर विश्राम करने के लिए दूर जा रहा हूं। लेकिन जब हम आकर और हम देखते हैं कि कलीसिया में थोड़ा कुछ यहाँ और वहाँ गड़बड़ी में है, और एक प्रकार से कुछ सदस्य थोड़े ठंडे पड़ गए हैं, दूर चले गए हैं, एक दूसरे के प्रति कुछ नफरत को रखते हैं, और इस तरह की इत्यादि बातें होती हैं। मैं यहाँ वहाँ जाता हूँ, एक से दूसरे तक जाता हूँ, जब तक इन बातों को सही नहीं कर लेता हूँ, यह ठीक बात है, समझे? और वहाँ कुछ भी गलत नहीं है, वहाँ किसी भी सदस्य के साथ कुछ भी गलत नहीं था। वहाँ पर हर एक भले स्त्री और पुरुष होते हैं। यदि वे केवल इसे जान जाए कि यह तो शैतान ही है जो लोगों के बीच में आता है, यह बिल्कुल सही बात है, ये लोग नहीं है। यदि आप एक भाई को इस तरह से देख सकते हैं, तब वो उस व्यक्ति के विरोध में कुछ भी नहीं रखेगा, वह बुरा महसूस करेगा, वह ऐसा महसूस करेगा जैसे ये तो मैं हूँ जो अपने भाई के प्रति शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। देखिए, यदि उसने कुछ गलत किया है तो इसलिए ये वो भाई नहीं है, यह तो वो शैतान है जिसने इसे किया है। आप कहते हैं तो ठीक है, इस व्यक्ति ने ऐसी ऐसी बात को किया है, आपके भाई ने इसे नहीं किया, आपकी बहन ने इसे नहीं किया, यह तो वो शैतान है जिसने उसमें से होकर किया है। इसलिए अपने भाई अपनी बहन पर दोष मत लगाओ, शैतान पर दोष लगाओ, वही वो एक है जो इस सब का कारण है। और इसलिए अब इन कलीसिया के सिद्धांतों में वे आपके प्रति हो सकता है बहुत ही अजीब हो, वे हो सकता है आपके उन सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से सहमत ना हो, लेकिन हम बस यही है जो हम विश्वास करते हैं। हम इसे विश्वास करते हैं क्योंकि यह बाइबल में है और हम इसे इसी तरह से सिखाते हैं। अब पिछली रात्रि को हमारा विषय था हम क्यों एक संप्रदाय नहीं है। अब हम एक संस्था हैं क्योंकि हम एक कलीसिया हैं, लेकिन हम एक संप्रदाय नहीं हैं। और फिर मैं कारण को बता रहा था हम क्यों एक संप्रदाय नहीं हैं। अब जैसे आज सुबह बातचीत करने को जारी रखते हैं, इससे पहले हम ऐसा करेंगे, आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, ये आपकी पवित्र उपस्थिति के अंदर है जिससे हम फिर से आकर हमारे खुद के मनों को साफ करें, हमारे प्राणों को, जिससे हम आपके लिए खुद को पेश कर सकें, एक वाद्य की नाई जिसमें आप कार्य कर सकें और जिसके जरिए से कार्य को कर सकें आपकी अपनी महिमा के लिए। और पिता, मेरे विचारों को और मेरे मन को और मेरे बोलने को शुद्ध करें, जिससे कि इसे मैं नहीं बोल सकूं, लेकिन पवित्र आत्मा होठों को जो मिट्टी है उसे अभिषेक करे, जिससे कि यह सच्चाई को सामने ला सके जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास है, ताकि उसकी कलीसिया जान जाए। और तब हम आपसे मांगेंगे, प्रभु यदि आप यह करते हैं, आप हर एक परेशानी देने वाले दुष्ट को पीछे हटा दें, हर एक बैर और घृणा के दुष्ट को लोगों में से निकाल दें, जिससे कि वे पवित्र आत्मा को बोलते हुए सुन सकें, जिससे परमेश्वर आज सुबह हमारे एक साथ इकट्ठा होने को महिमा को पा सके। और यदि हमारे हृदय में एक भी ऐसी बात है जो सही रूप से सही हालत में नहीं है, जहां आप हमारे साथ बोल सके, ओ परमेश्वर हम में से इसे दूर कर दे जितना पूरब पश्चिम से दूर है, क्योंकि हम केवल परमेश्वर की इच्छा को जानकर हम करना चाहेंगे। इसलिए आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा इस होने वाली कलीसिया के निमित्त बातचीत करें और इसके सिद्धांत पर हमारी अगुवाई करें, और यह किस लिए खड़ी होनी चाहिए और इसके लिए क्यों खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम इसे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब पिछली संध्या को हम इस विचार को दे रहे थे कि हम क्यों एक संस्थागत संप्रदाय नहीं है, और हम केवल इस पर एक बुनियाद के लिए डालते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि संप्रदाय में एक लकीर खींची हुई रहती है जो एक सीमा को बांधती है। अब हमारे पास बातचीत करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और हमने इसका वर्णन किया है, कलीसिया में स्त्री सेवकों को हम क्यों स्वीकार नहीं करते, जो पिछली रात्रि को बताया था। और इस सुबह हम विषय को लेना चाहते हैं, यदि हमसे संभव हुआ तो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में क्यों विश्वास करते हैं, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे आता है, और यह क्या करता है, और यह उसके बाद आपको क्या करने को लगाता है। और फिर आज रात यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मैं ये सर्प का बीज इस दिन में इस विषय पर बोलना चाहूँगा। अब लोग सर्प के बीज पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये वचन से है, समझे। अब इसके बावजूद, अब ये यदि मैं इस पर वास्तव में और मजबूती दे सकता हूँ तो, अब प्रिय लोगों, मेरा इसका अर्थ आपसे नहीं है, बात केवल इतनी है, मैं इसे अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हम इसे कड़ाई से करते हैं, देखा। इसलिए आप इसे इस तरह से बोलते हैं, आप कहेंगे, जॉनी जाकर बैठ जाओ, हो सकता है वो ऐसे नहीं सुनेगा, लेकिन आप कहते हैं, जॉनी बैठ जाओ, जॉनी इस पर ध्यान पूर्वक सुनेगा। इसलिए आज सुबह अब हम चिल्लाएंगे, जॉनी बैठ जाओ, समझे। तो ठीक है, मैं इसे बोलना चाहता हूँ जिससे कि आप इसे समझ जाएं हमारा क्या मतलब है, समझे। और यदि हम कुछ कहते हैं जो आपके विचारों के और आपके विश्वास के विपरीत होता है, और ना ही हमारी एक भी बात, ध्यान दें कि एक अंतर संप्रदाय होने के नाते इस कलीसिया में हम विश्वास करते हैं कि बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, यहूदी, जो कोई भी यह है, जब तक वह एक भाई है, वह हमारा भाई है, बस ऐसा ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस संस्था से ताल्लुक रखता है, परमेश्वर एक संस्था में होने के लिए उसके विरोध में कुछ नहीं रखता है, लेकिन संप्रदाय होने का कारण होता है। अब यहाँ पर जो संप्रदाय को आरंभ करते हैं, परमेश्वर किसी को तो कुछ तो थोड़ा सा प्रकट करता है, और वे आकर इसके इर्द गिर्द विश्वास करते हैं जो उन्हें मिलता है, और उसके बाद परमेश्वर उससे आगे नहीं जा सकता है। यहाँ तक मेथोडिस्ट कैसे उससे अधिक कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं जो अनुग्रह का दूसरा काम है, उन्होंने अपने आप को उसके नीचे संस्थागत कर दिया है। यहाँ तक बैप्टिस्ट कैसे उस बात से अधिक कर सकते हैं, धर्मीजन या लूथरन, मेरा मतलब है धर्मीजन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, वे इसी बात के नीचे संस्थागत हो गए हैं। कैसे बैप्टिस्ट जितना वे जाते हैं इससे अधिक जा सकते हैं, कहते हैं इसलिए जब आप विश्वास करते हैं आपने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पा लिया और पानी में डुबकी लगाई, बात यहीं पर खत्म हो जाती है। क्यों? यही है जिस बात के नीचे वे संस्थागत हो गए हैं, समझे। क्यों पेंटिकॉस्ट विश्वास करते हैं कि जब आपने अन्य भाषा में बोला आपको पवित्र आत्मा मिल गया, यहाँ यह समाप्त हो जाता है, कारण वे इसके नीचे संस्थागत हो गए हैं। भाई वे बातें हो सकती है हर एक जन की, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर किसी भी छोटी सी संस्था में बंधा हुआ नहीं है, वह बस सारी चीजों में फैला हुआ होता है, ऐसा ही है, हम इसे विश्वास करते हैं, और यही वो कारण है कि हम कभी भी एक संस्था नहीं बने हैं, प्रभु हमें एक मौका देता है जिससे यह छोटी कलीसिया विभिन्न संस्थाओं में विलीन हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम इसमें बिल्कुल वैसे ही बने रहना चाहते हैं, इसलिए कि यह यीशु मसीह की प्रभुता और अगुवाई के नीचे हो सके। यह सही बात है, जो कुछ भी वह हम पर प्रकट करता है और हम देखते हैं कि यह सच्चाई है और यह वचन के साथ मेल खाता है, आगे से लेकर पीछे तक बाइबल में से होते हुए यह सच्चाई है और आत्मा की इस पर सहमति होती है। हमारे पास कोई भी संस्थागत सीमा बाध्य नहीं है कि हमें इस पर सहमति करने से रोके। हम ठीक इसके अंदर आगे बढ़ते हैं और ठीक उस पर आगे जाते हैं। और इसलिए जब संस्था इस बात को कहती है, जैसे चर्च ऑफ क्राइस्ट वे एक संस्था के नीचे हैं जो चर्च ऑफ क्राइस्ट कहलाती है, कि अद्भुत कार्य के दिन बीत गए हैं और वे सारी बातें जो इस तरह से हैं, क्यों तुमने कभी इसे वचन में कहीं पाया है? लेकिन वे कभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वे इसके नीचे संस्थागत हो गए हैं। देखिए, इसलिए आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र होना चाहते हैं जहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं, वैसे ही जैसे हमें आत्मा आगे ले जाता है गहरी गहराइयों में और उच्च ऊंचाइयों के द्वारा, और केवल आगे बढ़ते रहते हैं और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, बस जहाँ कहीं भी हो। लेकिन अब हम किसी भी कट्टरपंथी को ग्रहण नहीं करते हैं, हम वहाँ पर एक रेखा को खींचते हैं। यदि किसी को कुछ थोड़ा सा मिलता है जो प्रभु ने प्रकट किया है और यह बाइबल के साथ मेल नहीं खाता है, जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सही नहीं बैठता है, एक सिद्धांत बन जाता है, तब हम इससे सहमत नहीं होंगे। समझे, इसे तो बाइबल से ही आना है और यह ऐसे ही किसी के भी प्रकाशन के द्वारा नहीं बनता है। यदि प्रकाशन वचन के साथ सही है तो अच्छी बात है। एक व्यक्ति कुछ समय पहले मेरे पास आया और उसने कहा, मैं अभी अभी संयुक्त राज्य से आया हूँ भाई ब्रैनम। उसने कहा, मैं अभी एक बहन के साथ परिचित हुआ हूँ और कहा, ये बसी बहन सबसे प्यारी स्त्रियों में से एक थी, लेकिन कहा वे पता लगाने के लिए आए हैं, उसके 3 या 4 पति थे, और कहा कि मैं यहाँ पर 3 महीने से हूँ, उस समय से लेकर मैं उसे जानता हूँ, वह एक पति को छोड़ती है और दूसरे से विवाह करती है, और कहा उसने पवित्र आत्मा को पाया था, हर समय निरंतर पूरी तरह से अन्य भाषा में बात करती थी और कहा भविष्यवाणियाँ और प्रकाशन देती, कहा वह सचमुच में एक आत्मा से भरी हुई स्त्री थी और वह एक महिला सेवक थी, और कहा मैं प्रभु के पास जाकर पूछने लगा, कैसे ये बात इस तरह उस तरह हो सकती है, कैसे वो स्त्री इस तरह से चीजों को कर सकती है, और कहा मेरे पास मेरी पत्नी के लिए एक सपना है और मेरी पत्नी का किसी और व्यक्ति के साथ प्रेम था जो कि चरित्रहीन थी, और फिर कहा वह आकर मेरे पैरों के पास घुटने टेक कर बैठ गई और कहा क्या तुम मुझे इस बात के लिए क्षमा करोगे जो मैंने किया है? उसने कहा निश्चय ही मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, और कहा तुम मुझे इतनी आसानी से क्यों क्षमा कर रहे हो? कहा क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और कहा प्रभु ने सपने में मुझसे आकर बातें की और मुझे बताया यही कारण है कि मैं उसे क्षमा करता हूं क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। मैंने कहा श्रीमान आपका सपना वाकई बहुत ही प्यारा था, यह सचमुच में बहुत ही अच्छा है, लेकिन यह सपना प्रभु ने आपको कभी नहीं दिया होगा, यह वचन के साथ मेल नहीं खाता है। यह सही बात है, यह वचन के साथ काम नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता यह कितना वास्तविक दिखाई देता है, इसे वचन से ही आना होता है। पुराने नियम में उनके पास एक संदेश को जानने के लिए 3 तरीके होते थे, पहला निश्चय ही वह नियम था, और अगला एक नबी के द्वारा, और अगला एक स्वप्न को देखने वाले के द्वारा। अब नियम एक लिखा हुआ शब्द होता था जिसे संदूक में रखा गया था और जो कि आज्ञा थी और आज्ञाओं पर नियम थे, और फिर एक नबी भविष्यवाणी कर सकता है या एक स्वप्न देखने वाला एक स्वप्न देख सकता है जो कि परमेश्वर दोनों के जरिए से व्यवहार करता है उन नबियों से और स्वप्न देखने वालों से। यदि वहाँ पर तुम्हारे बीच में कोई एक होता है जो आत्मिक है या नबी है, मैं प्रभु अपने आप को उसे स्वप्न में जानने को लगाऊंगा और उसे अपने आप को दर्शनों में प्रकट करूंगा, और यदि वह जो कहता है वह पूरा होता है तब उसकी सुनना क्योंकि मैं उसके साथ हूँ, यदि पूरा नहीं होता है तब उसकी मत सुनना। अब जब वह एक भविष्यवक्ता नबी या एक स्वप्न देखने वाले को लेते और उनके पास एक स्वप्न होता था या एक भविष्यवाणी और वे यह जानना चाहते थे कि यह सत्य है कि नहीं, वे उसे ऊपर उठाते जिसे उरीम तुमीम कहा जाता है। अब मैं जानता हूँ कि यह हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए एक कठिन शब्द है, लेकिन असल में ये जो था हारून जो इज़राइल के 12 गोत्रों के ऊपर याजक होने के नाते उसके छाती के पटके में दोनों तरफ 6 पत्थर हुआ करते थे और हर एक पत्थर उस गोत्र का जन्म पत्थर हुआ करता था जैसे यहूदा का गोत्र, गाद का गोत्र, रूबेन का गोत्र, बियामिन का गोत्र, हरेक का एक जन्म पत्थर था। और फिर जब वो जन्म पत्थर जो कलिसिया में या भीति स्तंभ पर उस पटुकों में से एक पर लटकता होगा, और फिर जब वे इस नबी को लाते जिसके पास भविष्यवाणी होती थी कि उसने कहा प्रभु एक विशेष बात को करने जा रहा है, और वह उसे यहाँ उसके सामने लाते और वह अपनी भविष्यवाणी को बताता या अपने स्वप्न को बताता। अब यदि परमेश्वर उस स्वप्न में था या उस भविष्यवाणी में, तब उनका प्रकाश एक साथ मिलकर चमकने लगता और एक मेघधनुष के रंग के समान चमकदार बनता, जो एक अलौकिक का उत्तर होता था। समझे, यह सही बात है। वहाँ पर हरेक पत्थर के साथ सहमति का होना, हरेक पत्थर उसके भाग के साथ एक साथ मिश्रित होते, परमेश्वर के उत्तर के साथ वापस प्रतिबिंब होते थे कि वो मनुष्य एक नबी है, वह सच्चाई को बता रहा था या वह सपना मेरे द्वारा भेजा गया था। लेकिन यदि वह केवल ऐसे ही पड़ा रहता और उसमें कोई हलचल नहीं होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यह कितना सच्चा दिखाई देता है। यह गलत था, वे इससे सहमत नहीं होते। क्या ही एक सुंदर आज के लिए चित्रण है। अब पुराने नियम में उरीम तुमीम से इसी तरह से किया गया था, क्योंकि इसने याजक पद को बदल डाला। अब उरीम तुमीम परमेश्वर का वचन है जो बाइबल है। जी हाँ श्रीमान, यहाँ पर बाइबल ने कहा हर एक मनुष्य की बात झूठी लेकिन मेरा वचन सच्चा ठहरे। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना वास्तविक दिखाई देता है जब एक मनुष्य बोल रहा है, या उसका सपना कितना वास्तविक है, या जो उसका प्रकाशन है। यदि ऐसा है तो बाइबल की हर एक किताब, संपूर्ण बाइबल इस पर प्रकाश को नहीं चमकाती है कि यह सच्चाई है। इसे ऐसे ही छोड़ दें, उसे वैसा ही छोड़ दें। अब आप यहाँ पर उस वचन के कुछ भाग को ले सकते हैं और यह कहता है यीशु ने ऐसा ऐसा किया और हम उसी तरह से करेंगे। आप इसे कैसे भी कह सकते हैं, जिस तरह से आप कहना चाहते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से वैसे ही होकर आना है और सही रूप से परमेश्वर के वचन के साथ एक पंक्ति में होना है। तब यह सच्चाई है कि यह परमेश्वर ऐसा बोल रहा है, यह उसका उरीम तुम्मीम है। इसलिए परमेश्वर ने किसी भी युग में ऐसा कभी नहीं किया कि एक कलीसियाओं की संस्थाएं हो। मुझे आप बताएं ऐसा कब हुआ था? और अब वहाँ कभी भी एक संस्था नहीं हुई थी अंतिम चेले के मरने के 365 वर्षों के बाद तक, ऐसा नहीं हुआ। वह रोमन कैथोलिक कलीसिया थी, और उसमें रोमन कैथोलिक कलीसिया में से परमेश्वर ने बाइबल में उसे प्रकाशित वाक्य 17 में एक वैश्य कहकर बुलाया। यही वो एक अपवित्र स्त्री है, और उसमें से उसकी पुत्रियां थी, और पुत्रियां वैश्य थी, अशुद्ध जैसे कि वह थी। यही बात वचन कहता है। और रोमन कैथोलिक कलीसिया ने प्रोटेस्टेंटिज्म को जन्म दिया, और वे ठीक वापस उसमें चले गए और उन्हीं बातों को किया जो उसने की थी। और उसके अपवित्र होने का जो कारण था, उसके पास उसके हाथों में सिद्धांतों का एक प्याला था जो उसके व्यभिचार के, उसके क्रोध की मदिरा थी, और वह इसे धरती के राजाओं को देती है, और वह बोझ से जल के ऊपर बैठी है और धरती के शासन करने वालों के ऊपर राज्य करती है। हम इसे इसी तरह से बाइबल में पाते हैं। हम पाते हैं कि उसे 7 पहाड़ों पर बैठना चाहिए जो एक कलीसिया है। हम इसे पाते हैं वो टिगुने ताज को पहने हुए सच कर बैठी हुई है। अधोलोक का अधिकार, आकाश और यातना सही है, और एक मनुष्य इसका शासक था। वह मसीह विरोधी था जो परमेश्वर के मंदिर में बैठा हुआ है, खुद को बता रहा है कि वह परमेश्वर है, धरती के पापों को क्षमा कर रहा है। हमारे पास यह सब है, इसमें से होकर हम गुजरे हैं और देखते हैं कि यह सही है। कहा यहाँ पर ये उसके लिए है जिसके पास बुद्धि है। हम पाते हैं कि ये वो आत्मा है जो स्पष्ट रूप से बोलते जा रहा है, उसके लिए जिसके पास बुद्धि है, उसके लिए जिसके पास ज्ञान है, उसके लिए जिसके पास विभिन्न आत्माएं वरदान है। क्या आप नहीं देखते कि परमेश्वर अंतिम दिनों में उस कलीसिया को आगे बढ़ा रहा है? वहाँ पर एक कलीसिया होगी जो आत्मिक वरदानों से, परमेश्वर के सच्चे दानों से भरी हुई है। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। और हम पाते हैं यह वास्तव में कहाँ पर था, इससे और ज्यादा सिद्ध नहीं हो सकता। इसे खुद अपने लिए लिखता है एक विकारिस, जो मसीह का एक प्रतिनिधि है, एक परमेश्वर की फिल्ली, विकारिस फिल्लीडी। और देखते हैं यदि ऐसा नहीं है तो आपके रोमन अंकों में, और देखिए यदि आपको 6666 नहीं मिलता है तो देखिए, यदि ये स्थान पर नहीं होता है या किसी भी और चीज के ऊपर नहीं होगा जो आपके लिए ऐसे ही वैसे संदेह को लाए, लेकिन बिल्कुल उसी स्थान पर होना है जहाँ शेष वचन कहता है यह बैठा हुआ होगा। और यहाँ पर हम प्रोटेस्टेंट हैं, ठीक बाहर आते हुए। अब आज हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे बाहर लाएं और दिखाएं ये सिद्धांत जिसे कैथोलिक कलीसिया ने लाया है, जिसे हमने ठीक यहाँ प्रोटेस्टेंट कलीसिया में अपना लिया है, और हम इसे लोगों को दे रहे हैं जो कि वही व्यभिचार का आत्मिक प्याला है जिसे वो स्त्री देती है, क्योंकि ये वचन के अनुसार नहीं है, यह मनुष्य का बनाया हुआ है, यह गलत भविष्यवाणी है, यह एक झूठ है, यह शैतान से है। और तब हम एक पृष्ठभूमि के लिए देखते हैं, यह दिखाने के लिए वो युग जिसमें हम रह रहे हैं, और हमने इसे पिछली रात्रि को लिया था कि एक नाजायज जन्म हुई संतान, अवैध संतान, यहाँ तक 14 पीढ़ियाँ प्रभु की सभा के अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकती हैं, जो कि 400 वर्ष होते हैं। एक पीढ़ी 400 वर्ष को दर्शाती है। यह कितना भयानक पाप था, कितना भयानक नहीं था, लेकिन अभी का क्या है? और यदि ऐसा नियम के नीचे था तो, और मसीह नियम को बढ़ाने के लिए आता है। उसने कहा, तुमने उन्हें कहते हुए सुना है जो पुराने समय के हैं, तू हत्या मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई भी अपने भाई से अकारण क्रोधित होता है वह उसकी हत्या कर चुका, उसने इसे बढ़ाया। तुमने उन्हें कहते हुए सुना होगा जो पुराने समय के हैं, तू व्यभिचार मत करना, जो कि कार्य था, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई भी एक स्त्री की ओर कुदृष्टि डाले वह व्यभिचार कर चुका, इसे हजारों गुना बढ़ाया। तो ठीक है, इसे इसने इसके लिए 14 पीढ़ियों को लिया इसे मंद करने के लिए। अब उस बारे में क्या है जब परमेश्वर का आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास इस पर डाला जाता है, और आज के लोग नौजवान बच्चे उच्च विद्यालय में बियर पार्टियां करते और शराब पीते और ऐसे रहते, और वो छोटी लड़कियां व्यभिचार में जीती हैं, वे छोटे लड़के इस तरह की चीजों को करते हैं। इसके बाद किस प्रकार की पीढ़ी ऊपर आ रही है, क्या है जो इन छोटी लड़कियों को इस तरह से काम करने को लगाती है? उनकी माताएं एक शौकीन महिलाएं थी, उनकी दादियां एक वृद्ध गायिका थी, और उसने कहा वह उनके माता पिता के अधर्म के प्रकोप को बच्चों पर डालेगा और उनके बच्चों के बच्चों पर और तीसरी और चौथी पीढ़ी पर। आप इससे अधिक और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और जब ये सारी बातें बाहर आना आरंभ होती है और धर्मी बीच एक तरफ होना आरंभ होता है, घटने और घटने लगता है, और दुष्ट बस दुष्टता करते जा रहा है, बहुत ही धर्मी केवल दुष्टता को करते जा रहा है और दुष्टता करता और दुष्टता करता है, वहाँ पर सारी चीजों को नष्ट करने के अलावा करने के लिए और कुछ भी नहीं है, वैसे ही जैसे उसने वहाँ रूढ़िवादी व्यक्तियों को नाश किया था। हर एक मनुष्य का विचार निरंतरता पाप से भरा हुआ है। हर एक बात मनुष्य जो आज सोचता है वो विस्की की बोतल के बारे में होती है या किसी स्त्री के बारे में, और यहाँ वहाँ आवारागर्दी करना, वे अपनी पत्नी के साथ सच्चाई से नहीं रह सकते हैं, लड़के उनके लड़कियों के लिए सच्चाई से नहीं रह सकते हैं, लड़कियां उनके लड़कों के लिए सच्ची नहीं रह सकती हैं, क्योंकि वे एक ऐसे स्थान पर हैं, इतना तक कि शैतान ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया है और उन दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हो गए हैं, सारी चीजें पाप से संचय बन चुकी हैं। यही वो कारण है हम इस दिन में हैं, और यही वो कारण है कि रूस बिल्कुल परमेश्वर के हाथों में खेल रहा है ताकि इन चीजों को यहाँ से हिला दे, बाइबल ऐसा कहता है। निश्चय ही परमेश्वर साम्यवाद को इस्तेमाल कर रहा है, वह इसे इस्तेमाल करेगा, साम्यवाद सारी चीजों को नष्ट कर डालेगा वचन के अनुसार, और हम उसी दिन में हैं। अब इन बातों को बाहर लाते हुए देखिए, ध्यान से सुनना लोगों, आप लोग इसका सामना कर रहे हैं, और आप यह आपके अनंत मंजिल को निश्चित करता है, तो इसलिए इसे कुछ ऐसे ही हल्के से मत लेना। इसे उरीम तुम्मीम में देखें जो प्रभावित कर रहा है, किस तरह से यह शब्द को प्रभावित कर रहा है। अब जब हम इन बातों के बारे में बोल रहे हैं, देखिए यदि यह बाइबल के साथ मिलता है, देखो यदि यह उसके साथ मेल खाता है जो वचन ने कहा है। अब हर एक कलीसिया, जैसे आप कहते हैं मैं एक मसीही हूँ, आप कौन से संस्था से ताल्लुक रखते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है वो कौन से संस्था से ताल्लुक रखता है? हम समझते हैं कि उस संस्था का परमेश्वर के बाइबल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, और सारे प्रोटेस्टेंट संप्रदाय वैश्य हैं। आपका बाइबल ऐसा कहता है। जब आप कहते हैं आप एक मेथोडिस्ट हैं, आप एक मेथोडिस्ट वैश्य हैं। आप कहते हैं आप एक बैप्टिस्ट हैं, आप एक बैप्टिस्ट वैश्य हैं। जब आप कहते हैं आप एक पेंटिकॉस्ट हैं, आप एक पेंटिकॉस्टल वैश्य हैं। यही है जो बाइबल ने कहा है, इसलिए वो वैश्याओं की माता है। अब यही वो सब आपके पास है। अब यदि आप इस संप्रदाय में संगति कर रहे हैं और फिर भी एक मसीह हैं, तो आप एक मसीही हैं, और आप एक मेथोडिस्ट नहीं हैं, आप एक बैप्टिस्ट नहीं हैं, आप एक पेंटिकॉस्टल नहीं हैं, आप एक मसीही हैं। ना ही क्योंकि यहाँ तक मैंने रेडियो पर आज की सुबह एक वार्तालाप को सुना जिस समय मैं कलीसिया में आने के लिए तैयार हो रहा था। हम मसीह की गोल टेबल की वार्तालाप में जो लुइस विले में थी और कलीसिया ने उस प्रसारण को अपनाया है जो उनके बच्चों के आधुनिक मद्यपान की शिक्षा है। यह किस तरह के मूर्खों का झुंड हम उत्पन्न करने जा रहे हैं? यह ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके माता और पिता जो घर पर हैं, वे परमेश्वर के बारे में और अधिक नहीं जानते हैं और जितना वे एक हॉटस्टॉट मिस्त्रियों की रात्रि के बारे में जानते होंगे। सारी चीजों से अलग रहते हैं। आपको अपने आप को आधुनिक नहीं बनाना है। आप नशाखोर बन जाते हैं जब आप ऐसा करते हैं। ओह, हम उसे लड़कियों को यह करने देते हैं और उसे लड़कों को ऐसा करने देते हैं और इत्यादि। इसी तरह से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हम किसी और पीढ़ी में नहीं जा सकते हैं। हम इसे नहीं कर सकते हैं। हम अंत के समय पर हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मेरी नीम हकीम की तरह क्लास को लें। मैं हो सकता है, यदि मैं हूँ, मैं बस इसे अनदेखा करता हूँ। मैंने अपनी पत्नी से कहा जो वहाँ बैठी हुई है, मैंने कहा, मेडा, क्या मैं एक धार्मिक कट्टरपंथी बन गया हूँ? क्या मैंने अपने दिमाग को खो दिया है? या क्या ये परमेश्वर का आत्मा है जो उन चीजों को नहीं खड़ा कर सकता है जो चिल्ला उठी है? क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो यहाँ तक मुझे मेरे खुद के विचारों के, मेरी खुद की इच्छा के विरुद्ध बनाता है? मैंने कहा, यह केवल तीन चीज हो सकती है। या तो हो सकता है मैंने अपने दिमाग को खो दिया है। यदि मैंने खो दिया है, मैं यह नहीं जानता। मैं एक गंभीर बेचैन व्यक्ति हूँ, यही बस मेरा स्वभाव है। मेरा जो वरदान है इसे करता है, लेकिन एक सेवक होने के नाते। लेकिन मैं या तो मैंने अपने दिमाग को खो दिया है, या तो मैं एक कट्टरपंथी बन रहा हूँ, या यह परमेश्वर का आत्मा है। इन बातों में से यह एक होना है। लेकिन मैं इन बातों को देखने के लिए खड़ा नहीं हो सकता हूँ और कुछ तो मेरे अंदर है जो बस चिल्ला उठता है। और मगर मैं जानता हूँ बाइबल के अनुसार इसे होना ही है। तब इस चिल्ला उठने से क्या भला होगा? कैसे परमेश्वर न्याय के समय पर खड़े होकर और इस पीढ़ी को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देगा यदि उसके पास इसके विरोध में एक आवाज नहीं पुकार उठती है ताकि इसे न्याय पर लेकर आए? फरिसियों का क्या होता यदि वहाँ पर जंगल में योन्ना नहीं होता जो चिल्ला उठे? ये क्या भलाई करेगा जब मैं आपको बताता हूँ उन्हें यह नहीं करना चाहिए और वह नहीं करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए और तुम्हें इसे नहीं करना चाहिए और तुम्हें आत्मा से भरना चाहिए? वे वहाँ से निकल जाते हैं और कहते हैं, सरफिरा है, पागल, इसके साथ कुछ तो हुआ है। तो इसे करने का क्या मतलब है? क्योंकि परमेश्वर के पास एक आवाज होना है, इसे कहना ही है, कैसे भी, जिससे कि वो न्याय को ला सकता है। कह सकता है, वहाँ पर ऐसा था, तुम इसे अनदेखा नहीं करते। यह सही बात है। और यदि तुम चिल्ला नहीं उठते हो तो वो क्या करेगा? वहाँ पर कोई तो तुम में चिल्ला उठता है। आप इसकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। अब फिर हम देखते हैं, जब हम अगले विषय को लाते हैं जो यह हमारे पास है, देखते हुए कि हम उस कारण से एक गैर संप्रदाय हैं और हम विश्वास करते हैं कि वहाँ पर फिर से जन्म पाए हुए मसीह लोग हैं, संत लोग हैं, मेथोडिस्ट में, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल और जो कोई भी है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया वो बीज है जो इस क्षेत्र के माध्यम से यहाँ मिश्रित हो गए हैं और जो हमने रात को बताया उसके द्वारा अंदर आ जाएंगे और हम इसका आगे वर्णन करेंगे, पहले से ठहराया जाना। ऐसा नहीं कि परमेश्वर कुछ भी होने के लिए पहले से ठहराएगा, लेकिन वो पूर्व ज्ञान के द्वारा वह पहले से ही ठहरा सकता है क्योंकि वह सारी बातों को जानता है। और हमने पिछली रात्रि को देखा कि वहाँ कोई भी नहीं बचाया गया था जैसे कि आज रात्रि को, और उसके नाम जीवन की किताब में लिखे हुए थे। आपके नाम या तो मेमने की जीवन की किताब में जगत के आरंभ होने से पहले डाले गए, या तो ये वहाँ पर थे ही नहीं, या ये कभी भी नहीं होंगे। हम ये पाते हैं, जब परमेश्वर ने मेमने को जगत की बुनियाद डालने से पहले घात किया, आप अपने मेमने के साथ घात किए गए थे। आप इसका विश्वास करते हैं? थोड़ी देर में हम इसे देखेंगे। आइए प्रकाशित वाक्य को खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य 17 या प्रकाशित वाक्य 13:8, और यहाँ पाते हैं बाइबल इसके बारे में क्या कहता है, या तो जब मेमना घात किया गया था। देखो, यदि इसे AD 33 या AD 33 में घात किया गया, या तो इसे जब घात किया गया था, तो ठीक है। अब यह संयुक्त राष्ट्र में यहाँ भविष्यवाणी है, निश्चय ही अब हम इसे पढ़ते हैं, और जो धरती पर है उसकी आराधना करेंगे, किसकी? पशु की, जिसके नाम मेमने के जीवन की किताब में नहीं लिखे गए थे। मेमना जगत की बुनियाद डालने से पहले घात हुआ था। मेमना कब घात हुआ था? 2000 साल पहले, हो सकता है 1,00,000 वर्ष पहले। इससे पहले कि जगत की बुनियाद कभी डाली जाती, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। ओह, लेकिन अब मैं धार्मिक हो रहा हूँ। इससे पहले वहाँ जगत होता, यीशु मसीह इसे बचाने के लिए मर गया। तो ठीक है, आप कहते हैं, तब क्यों परमेश्वर ने, उस अनंत परमेश्वर ने यहाँ तक पाप को अनुमति दे दी? आप जानते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के गुण हैं, और यदि परमेश्वर ने शैतान को अनुमति नहीं दिया होता, वह जानता था जब उसने लूसीफर की सृष्टि की कि वही वो एक होगा जो संसार को भ्रष्ट करेगा। ओह, हमारा परमेश्वर ऐसे ही कोई छोटा सा नहीं है, एक कोने में ढकेला गया हो, लेकिन वह अनंत परमेश्वर है जिसकी कोई एक शुरुआत नहीं थी या ना कभी इसका कोई एक अंत होना है। और उसमें वह उसके गुणों में है, वह एक उद्धार देने वाला है, और वह कैसे कभी एक उद्धार करता करके जाना जा सकता है यदि वहाँ पर कोई भी उद्धार होने के लिए नहीं होता है? हम कैसे कभी जान पाएंगे पहले कौन था? जैसे मैं एक सवाल को पूछता हूँ, पहले कौन था, उद्धार करता या एक पापी? तो ठीक है, यदि उद्धार करता पहले था और उद्धार करता पापी से ऊपर होता है, कैसे वो कभी पापी हुआ होगा? यदि वो एक पापी नहीं होता था तो उसे कभी भी एक उद्धार करता करके नहीं जानता था। कौन ज्यादा सामर्थी है, चंगाई देने वाला या एक बीमार व्यक्ति? वो चंगाई देने वाला, वो बस बीमारी को लेता है और उसे नष्ट कर देता है। पहले कौन था, एक परमेश्वर या एक कैंसर? क्योंकि वहाँ पर पहले एक परमेश्वर था। फिर परमेश्वर ने क्यों एक बीमारी को अनुमति दी? क्योंकि यदि वह इसे अभी नष्ट कर सकता है, वह इसके नहीं होने का कारण भी हो सकता है, और यदि वह अनंत है, वह इसे जानता था कि यह घटित होगा। लेकिन तब यदि वहाँ पर कोई बीमारी नहीं होती, तब वह एक चंगाई देने वाला करके नहीं जाना जाता, लेकिन वह एक चंगाई देने वाला होने के नाते वहाँ पर एक बीमारी को होना था। अब समझे कि मेरा क्या मतलब है? अब वह सारी बातों को जानता है। अब प्रकाशित वाक्य 13:8 में सुनना, और मेमना घात किया गया था कब? जगत की बुनियाद डालने से पहले। परमेश्वर उसके अनंत मन में समय के धारा में से होते हुए आगे की ओर देख रहा था, और उसने देखा कि क्या बात जगह लेगी और कैसे उसे उस सृष्टि को करना है, और इस समय के अंतराल में इसके अंदर डालना है, ताकि उस बात को बाहर लाए कि वह सचमुच में क्या था। क्यों तुम जो जवान पुरुष हो, जिनके पास पत्नी है, आप एक स्त्री को एक जांच की कसौटी के अंदर रखते हैं, आप देखोगे कि वह किस तरह की है। यह सही बात है, पुरुष को एक जांच की कसौटी के अंदर रखते हैं। यदि वह एक शराबी है तो वह एक बोतल को अपने मुंह से लगाएगा, यह आपको बताएगा कि वो इसे बचाया गया है या नहीं। यदि वह एक पुरुष है, आवारागर्दी करने वाला, एक घटिया नीच जो दूसरे पुरुषों के घर को तोड़ता है और कुछ स्त्रियों को निवस्त्र करता है, वह गलत व्यवहार करता है, इससे वह बताएगा कि वह किस तरह का व्यक्ति है। यह सही बात है, निश्चय ही परमेश्वर उसकी सामर्थ को दिखाने के लिए, यह दिखाने के लिए कि वह क्या था, वह एक उद्धार करता था। उसने एक पापी को यहाँ पर होने की अनुमति दी। जैसे मैंने बताया था, कैसे दूत छुटकारे की कथा के गीतों को गाएंगे, जबकि वे यहाँ तक जानते भी नहीं कि छुटकारे का क्या मतलब होता है। लेकिन हम इसे गा सकते हैं, हम जानते हैं कि खोने का क्या मतलब होता है और पाने का क्या मतलब होता है। आप कभी खोए हुए ही नहीं थे, तो आप कैसे जानेंगे कि पाने का क्या मतलब होता है? यह उनके लिए है जो खोए हुए थे, वे जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। यह उनके लिए है जो बीमार पड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि अच्छी सेहत में कैसा आनंद होता है जब ये आती है। यह उस घृणित व्यक्ति के लिए है जो सड़कों पर यहाँ वहाँ घूमता फिरता है, जिसका कोई भी एक मित्र नहीं था, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके कंधे पर हाथों को रखा हुआ हो, और यहाँ तक कोई भी नहीं है कि उसकी ओर देखे और उसका विचार करे। ये वही वो व्यक्ति है जो जानता है कि सच्चे मित्र का क्या मतलब होता है, जो उसके कंधे पर हाथों को रखता है। निश्चय ही आपको इसे जानना है। हम कैसे कभी जानेंगे कैसे हम चमकते सूर्य की सराहना करना है? यदि वहाँ पर एक रात नहीं होती थी। कैसे आप जानेंगे कैसे एक सुंदर प्रकाशमय दिन की सराहना करना है यदि वहाँ पर एक कभी भी वो एक बदली से भरा हुआ दिन न हो? कैसे आप इस गर्म सूर्य के उजाले को ग्रीष्म काल में सराहना करेंगे यदि वहाँ पर एक शीतकाल नहीं होता था? यही पक्ष और विपक्ष का नियम है। मैं प्रचार से बाहर जा रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई करने का अर्थ नहीं है, तो ठीक है। प्रकाशित वाक्य 17:8 जहाँ हम थे, अब कुछ मिनट के लिए, अब मैं दिखाऊंगा वो मेमना कब घात हुआ था जगत की बुनियाद डालने से पहले, तो ठीक है। प्रकाशित वाक्य 17:8 जो पशु तूने देखा है यह पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, कब? जगत की बुनियाद से। आपका नाम जीवन की किताब में कब डाला गया था? जैसे मैंने पिछली रात को बताया, वो मनुष्य जिसने गीत को लिखा वहाँ एक नया नाम है, वहाँ महिमा में लिखा गया है और यह मेरा है, यह मेरा है। इसका मतलब देखे तो वह सही था लेकिन वचन के अनुसार यह गलत था। आपका नाम उस रात्रि को नहीं लिखा गया था जब आप मसीह के पास आए। यीशु ने कहा, वे सारे जिन्हें पिता ने मुझे दिया है वह मेरे पास आएंगे और कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता है जब तक पिता उसे नहीं खींचता है। वे सारे मेरे पास आएंगे, मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा और अंतिम दिनों में उन्हें खड़ा करूंगा। उनमें से कोई भी नाश न होगा, मैं किसी को नहीं खोऊंगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य मेरे पिता के हाथ से उन्हें नहीं खींच सकता है जिन्हें मुझे दिया है। ओह प्रभु, संत यूहन्ना 5:24 जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है उसके पास अनंत जीवन है और वह कभी भी न्याय के लिए नहीं आएगा लेकिन मृत्यु से जीवन की ओर प्रवेश कर चुका है। इसलिए यह कलीसिया संतों की अटलता की निश्चितता में विश्वास करती है, न ही बैप्टिस्ट के रूप में, न ही प्रेस्बिटेरियन के रूप में, लेकिन बाइबल के रूप में। तो ठीक है, आप कहते हैं अब भाई ब्रैनम, मैं सोचता हूँ जो एक बार अनुग्रह में है हमेशा ही अनुग्रह में है, यह बहुत ही निरादर को लाता है। लेकिन जब एक पुरुष या एक स्त्री परमेश्वर की आत्मा से जन्म ले चुका है, पुरानी बातें जाती रही और सारी बातें नई बन जाती है और वह जन्म पाया हुआ और अनंत परमेश्वर के द्वारा आशीष पाया हुआ है और वे अब नाश नहीं हो सकते हैं, फिर परमेश्वर स्वयं ही नाश कर सकता है। क्या आपका मुझे बताने का यह मतलब है कि एक परमेश्वर जो अनंत परमेश्वर है वह नीचे आकर और आपको अनंत जीवन देगा यह जानते हुए कि वो आपको खोने जा रहा है, यहाँ आपका उद्धार करता है जानते हुए कि वो आपको वहाँ पर खोने जा रहा है? वह आपको किस बात के लिए बचाता है? क्योंकि वह अपने खुद के विरोध से काम कर रहा है। यदि आप एक बार बचाए गए हैं, आप सारी अनंतता के लिए बचाए गए हैं। वहाँ अधोलोक में कोई भी दुष्ट आत्माएं नहीं है जो आपको परेशान करें। अब वह असीमित परमेश्वर जो आदि से लेकर अंत को बता सकता है और आपको यहाँ पर बचा सकता है इस हफ्ते और जानते हुए कि अगले वर्ष आप पीछे हटेंगे और आपको खो देगा, तो ठीक है। वह उस तरह काम करने के लिए वो क्या कर रहा है? यह मूर्खता होगी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। यदि मैंने आपको आज मित्र बनाया है जानते हुए कि कल तुम मेरे शत्रु होने जा रहे हो, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं आपको ऐसे ही अकेले छोड़ दूंगा, समझे? परमेश्वर आज आपको उसका दास बनाता है क्योंकि वह जानता है और जानता था इससे पहले कि आप इस धरती पर आते, जब वो कैल्शियम को बना रहा था जो हमारे शरीर के अंदर चला गया, जब उसने उस जगत के प्रकाश को बनाया कि आप जो आपके अंदर है, जब वो पेट्रोलियम और उन सारी चीजों को बनाता है जिससे आप बने हैं, जब परमेश्वर ने इस धरती पर सृष्टि की वह आप में के हर एक तत्व को जानता था और आप क्या करने जा रहे हैं, कैसे वो अनंत परमेश्वर? तो अच्छा होगा कि मैं आज ध्यानपूर्वक चलूंगा, हो सकता है मैं पीछे हट जाऊं और कल खो जाऊं। आप आरंभ से ही बचाए नहीं गए थे। आप हो सकता है भावनाओं के नीचे कार्य कर रहे होंगे, आप हो सकता है सोचते होंगे कि आप बचाए गए हैं, आप महसूस करते होंगे जैसे आप बचाए गए हैं, आप हो सकता है सोचते हो कि मैं बचाया गया हूँ, आप हो सकता है कलीसिया से जुड़े हो, आप हो सकता है एक भले बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट या पेंटिकॉस्टल हो, इसकी एक भी बात का इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। आपके नाम कभी, यदि आप कभी बचाए गए हैं तो आप इससे पहले जगत का आरंभ होता आप बचाए गए थे, जब परमेश्वर ने उसके मन में यीशु को भेजा ताकि उस एक को बचाए जिसे उसने बचा हुआ देखा था। अब वह नहीं चाहता है कि कोई भी नाश होना चाहिए, वह नहीं चाहता है, लेकिन यदि वह परमेश्वर है, वह जानता है कि कौन होगा और कौन नहीं। वचन ऐसा कहता है, इसलिए आप वहाँ पर हैं। इसलिए हम बैप्टिस्ट से अलग हैं, मेथोडिस्ट से, और जो खुद को कैल्विनिस्ट विचार के लोग कहकर बुलाते हैं, लेकिन कैल्विनिज्म सही है। फिर हम अमेरिका की तरफ आ रहे हैं, उन्हें क्या मिला है? वे काम, यही होलीनेस का झुंड है। काम, परमेश्वर धन्य है, मैं अपने बालों को बढ़ने दूंगी, स्त्रियां कहती है, और ओह परमेश्वर की स्तुति हो, मैं एक छोटे आस्तीन की शर्ट नहीं पहनूंगा, पुरुष कहेगा, और इसी तरह की इत्यादि बातें। इसका उस राज्य के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। नहीं श्रीमान, आप अपने बालों को बढ़ने दे सकते हैं, आप जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं, और आप ऐसे वैसे और अलग बातें कर सकते हैं, इसका इसके साथ कोई भी लेना देना है ही नहीं। आप अपने कपड़ों की वजह से नहीं बचाए गए हैं। यदि ऐसा है तो परमेश्वर कुछ इस तरह के नमूनों को बनाता, यीशु को मरना ही नहीं होता था। आप बचाए गए हैं क्योंकि इस परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा बचाया। आप उन चीजों को केवल प्रशंसा पाने में करते हैं। आपकी सामान्य शिष्टता आपको ये बताती है, आप इन चीजों को प्रशंसा पाने में करते हो। काम वो है जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं। यदि मैं कभी भी कोई और सुसमाचार को प्रचार नहीं करता हूँ, और यहाँ पर 150 वर्ष तक जीता हूँ, और मैं तब भी बचा हुआ हूँ, निश्चय ही मैं बचाया नहीं गया हूँ क्योंकि मैं एक प्रचारक हूँ। मैं बचाया गया क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने मुझे बचाया है। वहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मैं कर पाता जिससे कि इसे प्राप्त करूं। मुझ पर ठीक अभी मुकदमा चला $500,000 के लिए, और उन्होंने कहा क्योंकि तुम वहाँ पर गए उन पैसों को जो तुमने वहाँ पर लिया है जिससे कि तुम अपने बिलों का भुगतान करो, ये पैसे तुम्हारे थे। इससे पहले तुम अपने बिलों का भुगतान करते, तुमने इसकी कलीसिया के द्वारा मंजूरी ली थी, लेकिन ये पैसे तुम्हारे पहले हैं। मैंने कहा लेकिन मैं इस पैसों से कभी भी एक चीज भी नहीं किया है। कहा हाँ आपने किया है। कहा आपने उन्हें बताया कि आप उन पैसों को एक प्रेम दान करके ले रहे हैं। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि कोई तो मुझे बताए कि यह कब हुआ था। तो तुमने इसे मेल के जरिए से मांग की थी। मैंने कहा मेरी ऑफिस में आकर तलाश करें, एक पैसा भी नहीं। आप जानते हैं बाइबल ने कहा कुछ भी विचार को मत लेना जो भी वह कहेंगे, क्योंकि यह तुम्हें उसी घड़ी पर दिया जाएगा। और मैं उन सरकारी वकीलों के पास बैठा था, और हर एक जन मुझ पर बार बार छापा मार रहा था हर तरह से और दूसरी तरफ से, और मैं अपनी क ख ग को भी मुश्किल से ही जानता था। और उन चतुर व्यक्तियों के सामने जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है ताकि आपको इन बातों को कहने को लगाए जो कि सचमुच में आपका इसे कहने का ऐसा मतलब नहीं होता है, फिर आप कैसे बुद्धि से इस तरह की बातों के साथ मुकाबला कर सकते हैं? वो हालांकि कभी मेरे गुरु के साथ बुद्धि से इस प्रकार से मुकाबला नहीं कर सकता है। ये वचन ऐसा कहता है, तुम कोई भी विचार को मत लेना जब तुम्हें राजाओं और शासकों के सामने लाया जाए। मैं जानता हूँ जो पैसा मैंने वहाँ पर लिया था मैंने उस बात के लिए लगा दिया था, और उन्होंने इसका विवाद नहीं किया। इसे कानून रूप से बिल्कुल वैसे ही खर्च किया गया जैसे किया जाना है, लेकिन उन्होंने कहा यह पहले आपका था और फिर आपने पैसे को ब्रैनम टैबरनेकल के लिए फेर दिया। मैंने कहा लेकिन मैं ब्रैनम टैबरनेकल का खजांची हूँ। और यह उसने कहा मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, फिर खजांचियों ने इसे क्यों नहीं किया और वे जो दूसरे हैं एक। मैंने कहा तब आप मुझे बेईमान बोल रहे हैं। कहा हम सोचते हैं आप बहुत ही ईमानदार हैं। कहा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ श्रीमान ब्रैनम। उस वकील ने कहा मैं केवल बस परमेश्वर की महिमा के लिए अब इसे बता रहा हूँ, और विशेषकर जवान लोगों के लिए। उसने कहा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको दिखाऊं कैसे, यदि आप बाइबल के द्वारा जीते हैं परमेश्वर आपके द्वारा जिएगा, और यदि आपका आत्मा इसके साथ असहमत होता है जो परमेश्वर कहता है तब आप बाइबल के द्वारा नहीं जी रहे होते हैं। ध्यान रखें पिछली रात को जब हमने उन महिला प्रचारकों के बारे में बात किया, जब वे कहते हैं ओह मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया है और इस तरह की चीजें। बाइबल ने कहा यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह एक नबी है या वो एक आत्मिक भी है, उसे इसे मानना है कि यह प्रभु की आज्ञाएं हैं, लेकिन यदि वह इसका इनकार करता है बस उसका भी इनकार होने दो। इसलिए यदि जब आप किसी व्यक्ति को कहते हुए सुनते हैं कि वह स्त्री प्रचारक में विश्वास करता है, ये ऐसा दिखाता है कि वह परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है या सच्चाई को नहीं जानता है। यही सच्चाई है। वचन ऐसा कहता है, हम इसे वहाँ पर पाते हैं, और वचनों में से होते हुए मेल करा रहे हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना सच्चा दिखाई देता है, यह इसके विपरीत है, यह सही नहीं है। अब हम यहाँ पर अब कुछ लेंगे, ध्यान देना, परमेश्वर, वो अनंत परमेश्वर जिसने धरती को और आकाश को बनाया और वो सारी बातों को जानता था और इसे जानता था इससे पहले कि जगत का कभी निर्माण होता, हर एक पिस्सू, हर एक पक्षी, हर एक जंतु, हर एक चीज जो होनी है, और आप उसके वचन के द्वारा जीते हैं। तब मैं वहाँ पर उन वकीलों के पास खड़ा हुआ था। ये वकील वहाँ पर चलकर आया और कहा, हमारा ऐसा मतलब नहीं है कि आपको बताने की कोशिश करें कि आप ईमानदार नहीं हैं। कहा, आप सच्चाई को इनकार कर रहे हैं कि जब कोई भी आपको पैसा देता है यह पहले आपका होता है। कहा, आपने एक चेक के लिए हस्ताक्षर किया है जिसे मिस्टर मीनर अर्गन ब्रेड ने दिया था, जो कैलिफोर्निया से था, क्रिश्चियन बिजनेसमैन, फुल गॉस्पल फेलोशिप से है, जो बहुत से हजारों डॉलर का था, और उसी दिन आपने इसे अपनी बैंक से निकाला और 4 या 5 विश्व भ्रमण की टिकट को निकाला था जो लगभग 24,000 डॉलर की थी। कहा, जी हाँ श्रीमान, उसने कहा, आपको उस पर इनकम टैक्स भरना है। क्यों? मैंने कहा, हम ठीक उसी बैंक पर खड़े हुए हैं, और उसने मुझे चेक दिया और मैंने इसे बैंक के अंदर पारित करवाया और उस पर पीछे टिकट को लिख कर दे दिया। उसने कहा, यदि आपके पास 1 मिनट के लिए चेक था, कहा, उसमें का आधा आपका था, ये आपके पास था 1 आधे मिनट के लिए, यह आपका था 1 आधा मिनट इससे पहले कि ये कलीसिया की संपत्ति बने, कहा, आपको इस पर इनकम टैक्स भरना होगा। कहा, उसने इसे कलीसिया को दिया था, उसने इस पर इनकम टैक्स को भरा था और उसने इसे कलीसिया को दिया, उसने इसे आपको दिया है। और मैंने कहा, आप इस पर इनकम टैक्स भरते हैं, यह कलीसिया को जाता है, तब यह बिना टैक्स के होता है। कहा, हम आपकी कलीसिया को टैक्स नहीं लगा रहे हैं, हम आपको टैक्स लगा रहे हैं। मैंने तब कहा, क्यों? मैंने कहा, वही व्यक्ति जिसने अपने नाम का हस्ताक्षर किया, उस सरकारी इनकम टैक्स वाले ने मुझे बताया कि इसे इसी तरह से करूं। उसने कहा, वो अब सरकार के साथ नहीं है। मैंने कहा, वे जिन्होंने नियम को लिखा वो सरकार के साथ अब और नहीं होता है, नियम तो फिर भी रहता है। मैंने कहा, किसी दिन तुम सरकार के साथ और नहीं रहोगे और तब तुम क्या करोगे? मैंने कहा, हम किस तरह की एक सरकार के साथ काम कर रहे हैं, निश्चय ही। लेकिन तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा, मिस्टर ब्रैनम, उसने कहा, हम पाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जानते हैं कि कहां पर आपने हर एक पैसे को खर्च किया है। मैंने कहा, अच्छी बात है। उसने कहा, यहां पर ये वो स्थान है जहां पर आपकी कनाडा में सभा हुई थी, अल्बर्टा में, और वहां पर आपको एक $3,000 का प्रेम दान दिया गया था। मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। मैंने कहा, उसी पिछले रविवार को, मेरा मतलब है, आप वहाँ गए और देखा जहाँ पर एक पुरानी कलीसिया थी और वे जिस कलीसिया में आराधना कर रहे थे और उस कलीसिया के ऊपर उसकी छत नहीं थी, और आपने उस $3,000 को उन लोगों को दिया है जिससे वो कलीसिया को बना सके। मैंने कहा, यह सही बात है। कहा, लेकिन आपको उस पर इनकम टैक्स को भरना है। कहा, आपने इसे उस कलीसिया के लिए दिया। कहा, देखो, यह पहले आपके थे इससे पहले कि ये उस कलीसिया के हों। उसने कहा, क्या ये सच्चाई नहीं है कि उस एक फलानी व्यक्ति का, और मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप में से बहुत से उसे जानते हैं, उसका घर जल गया था यहाँ इस शहर में, और आप वहाँ अपनी सभा से आने के बाद, और आपके पास $15,000 थे। अब यह हो सकता है आप में से हर एक जन को पैसा दिखाई देता होगा कि बहुत ही पैसा है, लेकिन यह मेरे लिए बस 15 दिनों की रोटी और बाकी का खर्च है जो मुझ पर एक दिन का $100 खर्च होता है। या तो मैं प्रचार करूं या मैं प्रचार नहीं करूं, उस ऑफिस का और दूसरी बातों का ध्यान रखने के लिए खर्च होता है। और कहा, आपके पास $15,000 थे और वह उस व्यक्ति का घर जल गया था और उसके लगभग 6 बच्चे थे और आपने उसे $15,000 दिए, निश्चय ही मेरे चेक वहाँ पर पड़े हुए थे। मैंने कहा, यह सही बात है। मैंने कहा, आप उस एक व्यक्ति से क्या करेंगे जिसके 5 बच्चे उस टेंट में इस तरह से रह रहे हों और वहाँ पर मौसम शून्य हो और जमीन पर बर्फ हो? आप सोचते हैं कि मैं एक अच्छे घर पर रह सकता हूँ और जानता हूँ कि वो व्यक्ति जो उन छोटे बच्चों के साथ वहाँ पर है ठंड से जम रहा है और उनके गर्म कपड़े और वस्तुओं से और उन पैसों की उनकी मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, क्या ये सच्चाई नहीं है कि वो व्यक्ति यहाँ एक गली में मर गया था और जो कैंटकी से आया था और उसके पास अंतिम संस्कार की क्रिया करने के लिए भी पैसे नहीं थे और तुमने उस व्यक्ति को गाड़ा था और तुम और तुम्हारी पत्नी ने पैसों को लिया और वहाँ जेसी पेनी के पास गए थे, उन चेक को दे दिया और कहा आपने वहाँ पर $200 खर्च कर दिए सिर्फ उन बच्चों के कपड़ों के लिए। मैंने कहा यह सही बात है। उसने कहा क्या ये सच्चाई नहीं है कि वो एक बूढ़ी महिला ठीक यहाँ फलाने शहर में जो तब न्यू एल्बनी में रहती थी, और कहा आपने उसे 300 और कुछ डॉलर दिए थे ताकि वह अपने घर के किराने का सामान का बिल भर सके जो उन्होंने देना बंद कर दिया था, और आपने उसके घर के किराए के लिए लगभग $500 दिए थे, वह उसे ठंड में बाहर निकालने ही वाले थे, और आपने उसके घर के लिए आने वाले जून तक का किराया भर दिया, और आपने उसके घर के किराने का बिल भी भर दिया जो वापस $1400 के ऊपर था। मैंने कहा मैं अच्छी तरह से इस बात को जानता हूँ, एक बूढ़ी माँ जो 80 वर्ष की है अपनी पीड़ित लड़की के साथ रहती है, और एक जॉर्जिया में प्रचारक लड़का है जो गठिया से पीड़ित है और बिस्तर पर पड़ा हुआ है और कोई भी सहारा नहीं था, आप उसके बारे में क्या करोगे? मैंने कहा हाँ मैंने किया। कहा क्या आपके खजांची समिति यह जानते हैं? मैंने कहा नहीं श्रीमान वे नहीं जानते। क्या आपकी पत्नी इसे जानती है? मैंने कहा नहीं श्रीमान वह नहीं जानती। कहा तब आपने इसे क्यों किया? मैंने कहा क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा कि तुम्हारे बाईने हाथ को भी न मालूम हो कि तुम्हारा दाहिना हाथ क्या कर रहा है। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास कोई परमेश्वर के नियम से बढ़कर नियम है? और बस तभी पवित्र आत्मा वहाँ पर बचाव करने के लिए आया, बहुत ही सुंदर तरीके से वो इसे करता है। वह उन बातों को अवचेतन रूप से कहता है यह नहीं जानते हुए किसे ये आप कह रहे हैं, यदि आप बस पवित्र आत्मा को बोलने दें। मैंने कहा तो ठीक है यदि आप जोर देते हैं कि मुझे इसे भरना है। मैंने कहा मैं करूँगा जितना मैं अच्छा कर सकता हूँ। मैंने कहा अब मैं लड़का नहीं हूँ लेकिन मैं अपनी तरफ से इसे भरने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा किसी को भी कुछ नहीं भरना है जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैंने ईमानदार बने रहने की कोशिश की है। मैं $1000 कर्ज में चला गया और इसे एक हफ्ते में $1 पर वापस भुगतान कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने इसे भर दिया है। मैंने कहा यदि आप दावा करते हैं और मुझे साबित करते हैं कि मुझे पैसों का भुगतान करना है जो मैंने उन लोगों को दिया है, और उन्होंने आगे आकर और दिखाया कि ये तकरीबन $20,000 थे जो मैंने पिछले 10 वर्षों में इसी तरह से दिए हैं, और उसने कहा वे खजांची इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैंने कहा यह उनके लिए आवश्यकता नहीं है कि वह इसे जाने। और सो उसने कहा तो ठीक है। तब उसने कहा मैंने कहा मुझे इस बात का दुख होता है यह जानकर कि उन गरीब बूढ़ी विधवाओं को और अनाथों को उन्हें भी इस पर इनकम टैक्स भरना है, या तो मरना या सरकार को भुगतान करना है। मैं नहीं जानता था, मैं जो कह रहा था यह पिता बोल रहा है और मैं इसे नहीं जानता था। ओह उसने कहा नहीं उन्हें इस पर इनकम टैक्स नहीं भरना है। मैंने कहा उन्हें इस पर क्यों नहीं भरना होगा? कहा आप देखिए वह अनचाहा दान था। तब पवित्र आत्मा ने मुझे जगा दिया। ओह मैंने कहा तब अनचाहे दान पर कोई भी टैक्स नहीं है? कहा यह सही है। मैंने कहा तब मुझे सरकार को कुछ भी नहीं भुगतान करना है क्योंकि मैंने कभी भी जीवन में प्रेम दान को लिया ही नहीं। तब एक वकील खड़ा हो गया और उसने कहा मिस्टर ब्रैनम क्या आप? मैंने कहा मैं ये साबित करने के लिए आपको 2000 दस्तावेजों को दे सकता हूँ। मैंने कहा मैंने कभी भी दान को नहीं लिया। कहा लेकिन जब आप बाहर इन सभाओं में जाते हैं उन सेवकों के द्वारा लिया जाता है और इसे भरा जाता है। कहा आप एक तरह से इस बात को समझते हैं कि आपको कुछ तो मिलने जा रहा है। मैंने कहा कुछ भी नहीं। उसने कहा तब तो ठीक है, क्या आप मेल के जरिए से नहीं मांग करते? मैंने कहा कुछ भी नहीं। कहा आपको पैसे किस तरह मिलते हैं? मैंने कहा जो लोग मुझे भेजते हैं। मैं ठीक अभी लोगों के चेहरे को देख रहा हूँ जो हमेशा ही दशवांश को भेजते रहते हैं। मैंने उनसे कभी भी नहीं मांगा है, वे बस इसे करते हैं। यही पवित्र आत्मा है, वो उसके अपने लोगों की चिंता कर सकता है। तब उसने कहा तो ठीक है। तब श्रीमान ब्रैनम क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? क्या आप मुझे कम से कम पिछले 8 या 10 वर्षों के दस्तावेजों को दिखा सकते हैं जो आपने प्रेम दानों को बिना निवेदन के लिया है? मैंने कहा जितने आप चाहो। उसने कहा मैं हर वर्ष के 3 दस्तावेजों को चाहता हूँ। मैंने कहा तो ठीक है आपको वे मिल जाएंगे। कहा तब क्या आप मुझे अपने पोस्ट ऑफिस के बॉस की चाबी देंगे और आपका पोस्ट ऑफिस बॉस को 2 या 3 दिन के लिए जमा करोगे और फिर वहाँ जाकर उसे मैं खुद खोलूंगा? कहा आप जो चाहे कर सकते हैं, आप मेरी ऑफिस में भी आ सकते हैं। उसने कहा, आप किस तरह की मांग को करते हैं? मैंने कहा, कुछ भी नहीं। तुम डाक से क्या भेजते हो? प्रार्थना के कपड़े। क्या तुम इसका दाम लेते हो? मैंने कहा, आकर और इन दस्तावेजों को पढ़ो जो मैं उनके साथ भेजता हूँ। ये ऐसा था। अब सरकार मुझे इस पर भुगतान कर रही है जो पिछले 20 वर्षों से मैंने इनकम टैक्स को भरा है। देखा, कोई भी विचार को मत लेना जब तुम बोलोगे, क्योंकि यह तुम नहीं जो बोलते हो, लेकिन जो पिता तुम में रहता है वह बात करता है। समझे? इसलिए हम वचन के साथ बने रहने पर विश्वास करते हैं। हो सकता है बहुत समय लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल सही वचन के अनुसार कार्य करता है। अब इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि बाइबल हमें बताता है, इससे पहले कि कभी जगत का निर्माण हो और इससे पहले यह अस्तित्व के अंदर आए, उस पिता ने मेमने को घात किया था। और फिर जब उसने मेमने को घात किया, उसने हर एक आने वाली संतानों के नाम को जीवन की किताब में रख दिया। और हम बस उस युग में जन्म लेते हैं जब तक ये सारे समाप्त नहीं हो जाते। आप समझे मेरा क्या मतलब है? वह अनंत परमेश्वर इसे जानता था कि इससे पहले जगत का आरंभ होता, उसने योजना को देख लिया था जो किया जाना था, और उसने बस इसे बना दिया। अब याद रखना, एक महान राजमिस्त्री की नाई, वो पिता जब उसने संसार को बनाया और कैल्शियम, पोटेश, पेट्रोलियम को रखा और इन सारे विभिन्न तत्वों को जो अंदर जाकर हमारे देहों को तैयार करते हैं, वह इसमें का हर एक अंश जानता था और जानता था किस तरह की वह रूपरेखा और शरीर होगा इससे पहले कि इसे कभी बनाया गया था। निश्चय ही वह इसकी अनंत मंजिल को जानता था और वह जानता है किस तरह की आत्मा इसमें वास करेंगी। और अब इससे पहले हम इस विषय को समाप्त करें, हम इसे आज रात को लेना है, सर्प के बीज में और स्त्री के बीज में, और फिर इसे लाकर और आपको दिखाना है कि यह क्यों है। देखिए किस तरह से सर्प का बीज आगे बढ़ा और वह स्त्री का बीज आगे बढ़ा। कैसे सर्प का बीज शक्ति में बढ़ना आरंभ हो गया है, शक्ति में बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ तक कि कुछ और नहीं बच गया है, केवल वे कुछ थोड़े नाम अभी भी बचे हुए हैं जो संसार की बुनियाद से पहले लिखे गए थे। लेकिन जब उस शरीर को बना चुका और वह अंतिम नाम जो उस किताब में है जिसे इस धरती पर पहचाना जाना है, वह किताब बंद होती है क्योंकि यह पूरी हो गई है, ये छुटकारे की कहानी पूरी तरह से पढ़ ली गई है। तब हम जाकर उसे देखते हैं और पुनरुत्थान में उसे मिलते हैं। वो जो मेरे वचन को सुनकर और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है जो कभी न्याय पर नहीं आएगा, लेकिन वह मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे न खींच लाए। और यह ना तो चाहने वाले पर है, यह न दौड़ने वाले पर, यह तो परमेश्वर है जो दया को दिखाता है, ऐसा वचन कहता है। ना ही वह जो चाहता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं कलीसिया से जुड़ जाऊंगा, मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा। इसका इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, यह तो परमेश्वर है जो दया को दिखाता है। अब आप देखें, जब परमेश्वर ने आरंभ किया, वहाँ पर परमेश्वर की सात आत्माएं हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेघधनुष में सात रंग होते हैं। और क्या आपने कभी ध्यान दिया है, एक त्रिकोण कांच का टुकड़ा सात सिद्ध रंगों को प्रतिबिंब करता है? क्या आपने इसकी कभी कोशिश की है? त्रिकोण कांच के टुकड़े को रखें, फिर भी यह एक ही कांच का टुकड़ा होता है, लेकिन तीन कोनों में ये सात रंगों को प्रतिबिंब करेंगे। यह इसी तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है जो अभी सात आत्मिक परमेश्वर के गुण होने हैं। और फिर वह पहला महान परमेश्वर का आत्मा जो कि प्रेम है, परमेश्वर, वो महान मेघधनुष के जैसा हम कल्पना नहीं कर सकते हैं वह किस तरह से दिखाई देता है, लेकिन हम इतना ही कहते हैं कि वह मेघधनुष जैसा दिखाई देता है। वे आत्माएं, वो प्रेम का सिद्ध आत्मा, लाल, नीला, जो सिद्ध परमेश्वर की संगति है, बस ये सारी सिद्ध आत्माएं। और फिर वो स्तर को नीचे गिराना आरंभ करता है, नीचे आते हुए, और वे वहाँ से नीचे अगोपो प्रेम से या फिलियो प्रेम से अगोपो प्रेम के लिए और नीचे अभिलाषा के लिए और सबसे निचले स्तर में। और फिर परमेश्वर खुद एक मनुष्य बन गया, यीशु, और उसी तरह से नीचे आकर नरक के सबसे निचले गड्ढों पर और उन्हें उठाया जिन्हें वो जगत की बुनियाद डालने से पहले जानता था, जिनके नाम किताब पर लिखे हुए थे, और अपने आप में वापस छुड़ा लिया। वहाँ पर आप हैं। छुटकारे की कहानी पूरी तरह से नहीं जानी जाएगी जब तक हम उसे नहीं देख लेते और हम उसकी समानता में नहीं खड़े हो जाते हैं। अब इसीलिए हम एक संप्रदाय नहीं है, इसलिए हम नहीं हैं। हम हर एक गतिविधि में सहयोग करते हैं जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, लेकिन इसीलिए हम एक संप्रदाय नहीं है। अब उन संप्रदाय से वह गलत चीजें बाहर आती हैं। अब जैसे मैंने कहा, मैं पूरी तरह से प्रयत्न कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये अंदर चला जाए। अब वहाँ बाहर किसी और की कलीसिया में मैं इन बातों के बारे में नहीं सोचूंगा। मुझे मसीही होना है, और भाई बस उन महान सिद्धांतों में बने रहना काफी है जिस पर हम सबको सहमत होना है, समझे। लेकिन यह बस ऐसा है, हम धोखा नहीं देना चाहते हैं। मैं कल एक नौजवान लड़के से बात कर रहा था जहां मैं गिलहरी के शिकार पर गया था, कल सुबह की बात है, वहां नीचे कंटकी के पहाड़ों पर, और मैंने ये ध्यान नहीं दिया, वहां जंगलों में कुछ सूचना चिन्ह था और मैं दूसरी तरफ बैठा हुआ था, और मैंने सोचा ये भाई बैक्स यहाँ पर है जो ऊपर जंगलों में से होते आ रहे हैं, वे भी गिलहरी के शिकार पर थे उसी इलाके में, और मैंने उन्हें आते हुए देखा था, और मैंने उस नौजवान पुरुष के लिए सीटी बजाई। मैंने सोचा ये भाई वुड है जिसने उसी तरह के कपड़ों को पहने हुए था। वह मुड़ा और मैंने देखा ये भाई वुड नहीं थे, और भाई वुड ने मुझे बताया था कि वो वहाँ ऊपर उस स्थान पर विज्ञापन था। मैं ये नहीं जानता था वहाँ पर कोई सीमा का बाड़ा नहीं था, केवल जंगल ही जंगल था, और मैं कैसे जानूंगा कि कौन सा हिकोरी पेड़ किस दिशा में होता है। इसलिए मैं वहाँ पर बैठा हुआ गिलहरी की आवाज को सुन रहा था और मैं इसके बारे में सोच रहा था। तो अब आज रात मुझे अपने स्थान में जाकर और सभा को आरंभ करना है, और मैं फिर से घोड़े की साज में वापस आ गया, और बारिश शुरू हो गई और हवाएं जोर से चलने लगी, और मैंने इस व्यक्ति को देखा और मैंने उससे बात की। मैं ऊपर वहाँ पर आ गया और पाया कि मैं उसके जमीन पर खड़ा हूँ। देखा, मैंने उससे बात की, फिर उसने कहा ओह कोई बात नहीं। उसने कहा ओह आप कहीं पर भी शिकार कर सकते हैं, जहाँ भी आप चाहते हैं। और मैंने कहा तो, उसने कहा आप मेरी जमीन पर नहीं हैं, आप हिकोरी पेड़ के उस ओर हैं। कहा और हिकोरी पेड़ के इस ओर मेरी जमीन है, लेकिन कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई ब्रैनम, आप जहाँ चाहे शिकार कर सकते हैं, आप ऊपर मेरे घर पर आएं, पापा आपको देखना चाहेंगे। देखा, और मैंने कहा तो ठीक है, हमें बाइबल के बारे में बात करना है। तब जब मैं शिकार के विषय पर था, उसने ये कहा, उसने कहा भाई ब्रैनम वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी के भी शिकार पर परवाह करता हो, लेकिन कहा मेरे पिताजी यहाँ पर एक दिन बाहर थे और कुछ शहर के शिकारी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने उनकी भेड़ को मार डाला जिसका वजन लगभग 60 या 70 पाउंड था, और पिताजी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और उस व्यक्ति ने बंदूक से उस पर गोली चला दी। उसने कहा यही है वो जो खराब बात है, कहा हम शिकार के लिए परवाह नहीं करते हैं। तो यही वो बात है जिस पर मैं बोल रहा हूँ, मैं परवाह नहीं करता हूँ कि आप कौन से संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बाइबल के साथ और पवित्र आत्मा के साथ बने रहें। ये आपकी संस्थाएं नहीं है जिसकी हम चिंता करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे विभिन्न से संबंध रखते हैं, लेकिन यह बाइबल के साथ बने रहना है या मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांतों को ग्रहण करना है। बाइबल के साथ बने रहो। अब उन्होंने संस्थाओं को आगे लाया है जो कि गलत था। अब अगली चीज जो उन्होंने आगे लाई थी जो कि एक गलती थी, जो पानी का बपतिस्मा था। पानी का बपतिस्मा जैसे बाइबल में सिखाया गया, यह डुबाने के द्वारा होता है, लेकिन कैथोलिक कलीसिया छिड़काव या पानी के उंडेलने को लेकर आई, और बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जो छिड़काव या पानी को उंडेलने का सहयोग करे। बाइबल में कोई भी स्थान पर ऐसा नहीं पाया जाता है, यह डुबाने के द्वारा होता है। तो फिर लेकिन कैथोलिक कलीसिया के बाद वहाँ साथ ही लूथरन कलीसिया आती है उनके पानी के उंडेलने के साथ, और साथ ही एंग्लिकन कलीसिया और इत्यादि, और जैसे ये आगे बढ़ते हैं, और कुछ समय के बाद बैप्टिस्ट आते हैं और कैम्बी बिलाइट, उन्होंने वापस डुबाने को लेकर आया। तो शैतान ने इसे देखा, इसलिए उसने बस वो डुबाने के लिए एक झूठे नाम को देता है, और उन्होंने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम का इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। वहाँ पर बाइबल के वचन में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कभी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में किसी को बपतिस्मा दिया गया हो, और जो कोई भी इसे सिखाता है यह एक झूठा शिक्षक है, और मैंने आपको बताया है मुझे इसे स्थापित करना है। अब यदि आप नहीं सोचते हैं कि यह सही है, मैं इस मंच पर आपके सवालों को चाहता हूँ, मुझे दिखाइए। यदि आप मुझे एक स्थान से भी दिखा सकते हैं जहाँ पर किसी को भी बाइबल में कभी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया है, मैं मेरी पीठ पर एक हस्ताक्षर को करूँगा कि मैं एक झूठा प्रचारक हूँ, और रास्ते पर यहाँ वहाँ जाऊँगा और अपने हाथ को ऊपर करके ऊंची आवाज में जोर से चिल्लाऊंगा, एक झूठा शिक्षक। वहाँ इस तरह की कोई एक बात नहीं है, यह कहाँ से आया है? अब वापस जाएं, यह बाइबल के इस तरफ है, आपको इतिहास को लेना है। कैथोलिक बहुत से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और उन्होंने टुकड़े करके एक सच्चे परमेश्वर को तीन अलग अलग परमेश्वरों में कर दिया है। और मुझे सुनना, क्या यह भयानक बात है कि अखबार में एक दिन आया था एक व्यक्ति के बारे में बताते हुए, जिसे हम सब उसे एक परमेश्वर का दास करके जानते हैं, बिली ग्राहम। हमारे पास कुछ शब्द हैं, भाई बिलर के पास वहाँ पर ये बातें हैं। जब किसी के द्वारा बिली ग्राहम से पूछा गया, कौन जो उस महान त्रिएकता के इस खंडन के बारे में क्या है, क्या वहाँ पर तीन परमेश्वर थे, असल में तीन परमेश्वर थे, या यह कैसे था? एक स्थान पर यह ऐसा दिखाई देता है जैसे वहाँ पर, बिली ग्राहम ने कहा, इसे प्रकट नहीं किया गया है, कोई भी नहीं जानता है। ओह, यदि वहाँ पर तीन परमेश्वर हैं, हम मूर्ति पूजक हैं। जैसे उस यहूदी ने कहा, उनमें से कौन सा तुम्हारा परमेश्वर है, वो पिता, क्या वो पुत्र तुम्हारा परमेश्वर है, या वो पवित्र आत्मा तुम्हारा परमेश्वर है? वहाँ पर केवल एक ही परमेश्वर है, और वे तीन व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि एक व्यक्तित्व के लिए एक व्यक्ति को होना है, ये बिना एक व्यक्ति के हुए एक व्यक्तित्व नहीं हो सकता है। आप ये जानते हैं कैसे बिना एक व्यक्ति के हुए कोई भी एक व्यक्तित्व हो सकता है? ओह, कहा, हम तीन व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के तीन व्यक्तित्व में विश्वास करते हैं। तो इससे पहले यह एक व्यक्तित्व हो सके, इसे एक व्यक्ति होना है। तो फिर यह क्या है? आप कहते हैं यह तीन परमेश्वर नहीं है, यह तीन उसी परमेश्वर के कार्यस्थल हैं। वो आरंभ में पिता था जो उनके ऊपर उस जंगल में मंडरा रहा था, उस अग्नि की ज्वाला में, उस जलती हुई झाड़ी में। पितृत्व, परमेश्वर, जैसे मैं बताते आ रहा था, कृपालु नीचे आते हुए, जो कि सर्वोच्च क्रम था। वह आत्मा, वह अगापे जोई, जो परमेश्वर का जीवन है, जिसने स्वयं को एक अग्नि के रूप में बनाया, और उसी एक परमेश्वर ने पितृत्व होने के बाद पुत्र बन गया, और वो आत्मा जो जलती हुई झाड़ियों में था, वो मनुष्य में था, मसीह में। इसने उसी प्रमाण को आगे लाया जो उस अग्नि ने किया, कहा, यदि मैं अपने पिता के काम को नहीं करता, मुझ पर विश्वास मत करना। हर एक पेड़ उसके खुद के फल के द्वारा गवाही को देता है। और फिर बाद में यह मनुष्य बन गया, देखो वो नीचे उतर आया, अलौकिक से वास्तविक के अंदर, कुछ तो ऐसा जिसे छुआ जा सकता है, एक शरीर। और उस बलिदान की मृत्यु के द्वारा, और इस एक परमेश्वर का वो सर्वोत्तम बलिदान यीशु, उसने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं, मेरा पिता मुझ में रहता है। क्या कोई भी इसे ऐसे साफ तौर से नहीं पढ़ सकेगा? उन्होंने कहा, तू हमें पिता को क्यों नहीं दिखाता और यह हमें संतुष्ट करेगा, यूहन्ना 14:8 में। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों से रहता हूँ और तुम मुझे नहीं जानते। उसने कहा, जब तुम मुझे देखते हो तुम पिता को देखते हो। जैसे एक महिला एक बार उछल पड़ी, उसने कहा, क्यों भाई ब्रैनम? उसने कहा, हाँ, पिता और पुत्र एक हैं, जैसे आप और आपकी पत्नी एक हैं। मैंने कहा, ओह नहीं, ये नहीं है। मैंने कहा, क्या तुम मुझे देखती हो? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, तुमने मेरी पत्नी को देखा? कहा, नहीं। मैंने कहा, तब वे इस तरह के एक नहीं हैं। यीशु ने कहा, जब तुम मुझे देखते हो, तुम पिता को देखते हो। पिता मुझ में रहता है, मेरी पत्नी मुझ में नहीं रहती है। समझे? वे एक हैं, हर तरह से वे एक हैं। हम एक सहमति के जरिए से एक हैं, पत्नी और मैं, हम संगति में एक हैं, लेकिन हम दो व्यक्तित्व हैं। मेरी पत्नी एक तरह के विचारों के साथ हो सकती है और मैं दूसरे विचारों के साथ, और हम दो व्यक्ति हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वह परमेश्वर और मसीह स्वयं में वही व्यक्ति है। तब पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा वही वो परमेश्वर का आत्मा है जो लोगों में रहता है, जिसके लिए वो मरा था और उनके नाम मेमने के जीवन के किताब में लिखे थे। वे आदि में जो उसके साथ एक थे, वचन ऐसा बताता है। क्या यीशु ने उन्हें नहीं कहा, जगत की बुनियाद डालने से पहले वे उसके साथ थे? तुम्हारे मन काले और अंधकार में है, और हम सबके उन सारी बातों के लिए। लेकिन हम ऐसे ही कुछ छोटे से संयोग के होने से यहाँ पर नहीं है। हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या है, परमेश्वर की सृष्टि के आदि में, और यहाँ नीचे भेजा गया एक गवाही के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के गवाह होने के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय की गहराई में उंडेला गया है। हमारे पास एक अनंत आत्मा है, कोई नहीं, और वहाँ पर कोई भी जरिया नहीं जो इसे रोक सके। परमेश्वर की कलीसिया वहाँ पर होगी, बिल्कुल उतनी ही निश्चय रूप से जितनी वह निश्चित हो सकती है। जैसे हम बोल रहे थे कि उस छोटे से विषय को फिर से लेंगे, बस एक कुछ समय के लिए, कैसे वे अवैध बालक 14 पीढ़ियों के लिए राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, यानी 400 वर्ष, और कैसे माता पिता का अधर्म इन बच्चों के लिए आता है उस तीसरी और चौथी पीढ़ी के लिए। माता पिता की धार्मिकता भी उन पर आई थी। आप क्या करते हैं यदि वहाँ पर आने वाला कल है और आपका परपोता होता है? आपके आज के कार्य निश्चय रूप से दिखाते हैं कि वो तब क्या होगा, क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं जहाँ पर मलकीसेदेक जब वो अब्राम से मिला जो राजाओं को घात करके लौट रहा था, अब्राम उस प्रधान ने उसे दशवांश को दिया, जो भी उसके पास था उसका एक दशवांश। और तब उसने ये कहा कि केवल ये दशवांश लेवी लोग ही ले सकते हैं, लेकिन उसने कहा लेवी जिन्होंने दशवांश को ग्रहण किया, दशवांश को भरा, जब वो अब भी अब्राम के जांघों में था। ओह, क्या आप इसे पकड़ सकते हैं? अब्राहम लेवी का परपोता था, और यहाँ लेवी 8 या 10 वर्षों के बाद, हो सकता है बहुत सैकड़ों वर्षों, मैं नहीं जानता, बस जो भी है, बहुत से वर्षों के बाद पीढ़ियों से होते हुए आपको इसका अनुमान लगाना होगा। लेकिन अब्राहम को इजाक उत्पन्न हुआ, इजाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब को लेवी उत्पन्न हुआ, और यहाँ पर लेवी का पिता याकूब होगा, इजाक उसका दादा होगा, और अब्राहम उसका परदादा होगा। और जब याकूब अब्राहम के जांघों में था, बाइबल ने कहा उसने मलकीसेदेक को दशवांश दिया था। और तब यह जवान पीढ़ी जो यहाँ वहाँ घूमती है, सिगरेट पीती है, शराब पीती है और सब कुछ करती है, आप कैसे दूसरी पीढ़ी के अस्तित्व में आने की अपेक्षा करते हैं? हमारे पास पाप होने का कारण, अभी जो नौजवानों के अपराध इन छोटी लड़कियों के सड़कों पर होने का जो कारण है, और वह छोटे लड़के क्योंकि उनके माता पिता ने ऐसा ही किया जो उनके बीते हुए युग में किया गया था। और हमारे पास अब भी प्रचारक हैं क्योंकि सच्चाई के लिए वे खड़े होंगे, उसका कारण है। हमारे पास अब भी कुछ पुरानी आधुनिक चरण की लड़कियां हैं, उसका कारण है क्योंकि उनके पुराने आधुनिक चरण के माता पिता हैं जो उनके पीछे हैं। यह बिल्कुल सही बात है। हमारे पास अब भी ऐसे प्रचारक हैं जो किसी भी संप्रदाय से या वचन के साथ बिना समझौता किए हुए खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे पुराने चरण के प्रचारक थे जो पहले हुए थे, जो ठीक उसी स्थान पर खड़े हुए हैं। जी हाँ, अब हम इस दिन में हैं, और अब हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हम वापस कुछ संप्रदाय हैं, हम इसी कारण से एक संप्रदाय नहीं हैं, और क्योंकि यदि हम एक संप्रदाय थे हमें उसके सामने झुकना होता था। और याद रखना, आप वचन में से ढूंढे जहाँ से भी आप चाहते हैं, और आप बाइबल में एक स्थान भी नहीं पाएंगे जहाँ कोई भी छिड़काव के द्वारा या पानी उड़ेलने के द्वारा या पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा हुआ था। इसलिए यदि यह वचन में नहीं है तो इसकी कहीं पर तो शुरुआत हुई थी। जैसे मैं कहता हूँ बड़े पेड़ के नीचे बैठकर इसकी ओर देखते हुए, यह ओह यह हो सकता है एक बलवान होगा, एक बहुत ही विशाल, ये हो सकता है बहुत ही शक्तिशाली हो, लेकिन इसका एक आरंभ था, इसकी शुरुआत होनी थी। और हर एक चीज जो पुराने समय का धर्म है, जिसके लिए हम पूरी तरह से हिम्मत से खड़े होते हैं, इसे होने के लिए इसकी एक शुरुआत होनी थी। और यह रीति रिवाज जो हमारे पास है, इसके होने के लिए एक शुरुआत को होना था। वे झूठे वचन जिसे हम हमारे संप्रदाय में इस्तेमाल कर रहे हैं, होने के लिए एक शुरुआत को होना था। और यदि हम कहते हैं मैं एक मेथोडिस्ट हूँ, आपको इसे होने के लिए एक शुरुआत का होना था। यदि आप कहते हैं मैं एक बैप्टिस्ट हूँ, आपको इसे होने के लिए एक शुरुआत को होना था। आप कहते हैं मैं कैथोलिक हूँ, आपको इसे होने के लिए एक शुरुआत का होना था। आप कहते हैं मैं फिर से जन्म पाया हुआ मसीह हूँ, आपको इसे होने के लिए एक शुरुआत को होना था। आपको होने के लिए इसे होना था। वापस जाकर आप देखें इसकी कहां पर शुरुआत हुई थी। आइए वापस तस्वीर के आरंभ में जाएंगे। तब यदि बाइबल में वहां कोई संप्रदाय नहीं है तो तब संप्रदाय होने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कैथोलिक कलीसिया के साथ हुई थी। प्रोटेस्टेंट तो बस इसमें की वंशिका है। तब यदि बाइबल ने कहा कि वह एक कुख्यात स्त्री थी, क्योंकि उसके सिद्धांत, उसने आत्मिक व्यभिचार किया था। व्यभिचार क्या है? याद रखें, हम अभी इसमें से होकर गए हैं। एक स्त्री अपने पति के साथ रह रही है, वो उसी तरह से है जैसे एक कुंवारी होती है। वह कभी भी अशुद्ध नहीं हुई है जब तक वो स्त्री उस एक पुरुष के साथ रहती है। लेकिन अधार्मिकता क्या है? और धार्मिकता का बिगड़ा हुआ रूप है, उसे दूसरे पुरुष के साथ जीने दो, वह भ्रष्ट हो जाती है। समझे, धार्मिकता का बिगड़ा हुआ। अब यदि संप्रदाय गलत थे, यदि यह सही होते थे तो परमेश्वर ने कहा होता अब हमारे पास एक संप्रदाय होगी। और यदि कैथोलिक कलीसिया को बाइबल में एक वैश्य की नाई करके बताया गया था अधार्मिकता, क्योंकि वह अपने सभा के लोगों को अपनी खुद की शिक्षा को दे रही थी और बाइबल की नहीं। भाइयों बहनों, क्या रोमन कैथोलिक कलीसिया आपके मुंह के सामने नहीं हंसते हैं इस बाइबल की बात को लेकर? वे कहते हैं वे परवाह नहीं करते कि बाइबल क्या कहता है, यह तो वो है कि कलीसिया क्या कहती है, उनके संप्रदाय क्या कहते हैं। तो ठीक है, तब आप कैसे उन्हें गलत कह सकते हैं, जबकि आप पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए नीचे झुकते हैं, जबकि बाइबल इसे दोषी ठहराता है, क्योंकि मेथोडिस्ट ऐसा कहते हैं, बैप्टिस्ट वैसा कहते हैं। क्यों आप छिड़काव या जल के छिड़कने से सहमत होते हैं, जबकि बाइबल में इस तरह की कोई बात नहीं है? वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जैसे किसी ने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हो, तब आप इसे क्यों करते हैं? देखो, इसलिए हम एक संप्रदाय नहीं है, हमें उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करना है। हमारे पास जब आत्मा वचन पर उजाले को डालता है, हम यहोवा योग कहता है के साथ बने रहते हैं। आप वहाँ पर हैं, वहाँ पर इस तरह की कोई चीजें नहीं है, यह वचन में लिखा नहीं है। ओह, आप कहते हैं मत्ती 28:19 के बारे में क्या है? अब हमने इसे दर्जनों बार साफ किया है, यही एक समस्या थी जो यीशु ने कहा, इसलिए जाओ सारे राष्ट्र को सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या इसे कभी पूरा किया गया था? क्या किसी व्यक्ति ने कभी इस तरह से बपतिस्मा लिया था? एक को भी नहीं। तब वहाँ पर कहीं कुछ तो गलत है, निश्चय ही इसे कैथोलिज्म ने किया है। इसे ढूंढे कि वहाँ पर कभी इतिहास में ऐसा हुआ था। वहाँ उस एंटेनिसिन पिता, आप जो इतिहासकार हैं, आप एंटेनिसिन पिता की किताबों को पढ़ें और देखें, इंग्लैंड के राजा की गहराई पर जाएं, उनमें से हर एक जन ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था कैथोलिक कलीसिया के आने तक। और कैथोलिक कलीसिया के पास सामर्थ्य थी, उन्होंने कहा वह कुछ भी बदल सकते हैं, जो भी वे चाहते हैं, और वे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के अंदर चले गए। मार्टिन लूथर ने इसे ऊपर लाया, जॉन वेस्ली ने उसका अनुकरण किया, और अलेक्जेंडर कैंपबेल ने इस बात के साथ लेकर आए, और जॉन स्मिथ जो बैप्टिस्ट कलीसिया का था इसका अनुकरण किया। यहाँ पर पेंटिकॉस्टल अब भी उसी के साथ है, लेकिन समय आ चुका है। उस चिरागदान की ओर ध्यान दे जिस पर हम पिछली रात्रि को थे। चिरागदान उजियाला है, यह अंधकार में और अंधकार में होता गया, जब तक यह 1500 वर्षों में अंधकार युगों के अंदर नहीं चला गया, तब उजियाला ऊपर आने लगा। और अंतिम युग के ठीक पहले वो वापस चमकने लगी, दो कलीसिया युगों के बीच में वो उजाला आया। वचन को अनुकरण करते हुए एफिसियों कलीसिया के थिस्सलुकियों कलीसिया और आगे अंधकार युग में होते हुए उसमें के हरेक उसने कहा तुम्हारे पास थोड़ी शक्ति है लेकिन तुमने मेरे नाम को इनकार नहीं किया है और अगली कलीसिया तुमने एक बड़े काम को किया है लेकिन तुमने मेरे नाम को इनकार नहीं किया है। एंटोनिसिन पिताओं में से आगे उसका अनुकरण करते हुए तुमने मेरे नाम को इनकार नहीं किया है। फिर 1500 वर्ष जो अंधकार युग है एक लूथरन कलीसिया बाहर निकल आई उसने कहा तुम्हारे पास मेरा नाम नहीं है लेकिन तुम्हारे पास एक नाम है अब यीशु नाम नहीं रहा लेकिन लूथर और कैथोलिक और बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन तुम्हारे पास एक नाम है जो तुम जी रहे हो। हम एक जीवित कलीसिया हैं हम फल फूल रहे हैं हम बढ़ रहे हैं लेकिन तुम मरे हुए हो वचन ऐसा कहता है क्योंकि वहाँ पर कोई और नाम आकाश और धरती के नीचे मनुष्य के बीच में नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य बचाया जा सके ना ही बैप्टिस्ट आपको बचाते हैं प्रेस्बिटेरियन आपको नहीं बचाते हैं कैथोलिक आपको नहीं बचाता है यीशु आपको बचाता है। वो सब छोटी लिखित किताब में है मनुष्य की बनाई हुई शिक्षाएं उन्होंने उसमें इसे लिख दिया है यही है जो हम विश्वास करते हैं और इसी कारण से हम इससे दूर रहते हैं। हमारे पास कोई लिखित किताब नहीं है सिवाय बाइबल के कोई अगुवाई नहीं कोई बिशप नहीं लेकिन वो आत्मा है यह सही बात है। और फिर यदि वहाँ पर एक गलत आत्मा अंदर आता है वो कुछ तो वहाँ पर घुमाने की कोशिश करेगा वचन इसे नहीं घुमाने देगा यह गलत है इससे दूर रहो समझे। यहाँ साथी आत्मा आता है कहते हुए ये गलत है वो गवाही को देता है क्योंकि हमारी आत्मा और उसकी आत्मा के साथ गवाही देती है। यहाँ साथी एक आता है कहते हुए ओह हमें चाहिए मैं सोचता हूँ ये उनके लिए इसे करना ऐसा करना और इत्यादि करना ठीक है लेकिन उस आत्मा ने कहा वहाँ पर कुछ तो उसके साथ गलत है ठीक वापस बाइबल की ओर जाते हैं और ठीक वहाँ पर लाते हैं जिस तरह से हम करते हैं और ये गलत है इससे दूर रहो। यही वो कारण है बाइबल ने कहा यहाँ यह उसके लिए है जिसके पास बुद्धि है यहाँ ये उसके लिए है जिसके पास ये ज्ञान है यहाँ ये उसके लिए है जिसके पास ये है। यह कलीसिया वहाँ पर है जो क्रम में बैठी हुई है क्या आप परमेश्वर की महान योजना को नहीं देखते हैं। अब देखो फिलिदिपिया कलीसिया काल मेथोडिस्ट कलीसिया काल था जो भाईचारे के प्रेम का कलीसिया काल था जो सुधारक था जो कि जब कैल्विनिज्म एंग्लिकन कलीसिया इंग्लैंड में ऊपर आई जहां उनके पास यहां तक और कोई बेदारी भी नहीं हुई थी जो सूखी घास के बीजों के अंदर चली गई। परमेश्वर ने जॉन वेस्ली को विधि समत की नई खड़ा किया ताकि वह अर्मिनियम के सिद्धांतों को ले और जब उसने इसे किया उसने उसके सर पर इन चीजों को दे मारा और इसका अधिकारी बनने के लिए लेकिन उसने क्या किया यहाँ पर साथी मेथोडिस्ट आते हैं और बिल्कुल वैसे ही उस तरह से दौड़े जैसे वो कैल्विनिज्म जिस तरह से दौड़े थे अब उनके बीच में अभी भी मेथोडिस्ट हैं अभी भी बैप्टिस्ट हैं। सोचता हूँ हम यहाँ अब वचनों में ले सकते हैं प्रकाशित वाक्य 3 को लें और आपको यह मिल जाएगा। अब बस इससे पहले वह अंतिम कलीसिया काल जो पेंटिकॉस्टल था वह ठंडा गुनगुना है लोथकिया कलीसिया काल जो ठुकराया गया लेकिन याद रखे जैसे यीशु को क्रूस पर देखा गया था जो साथ सोने के दीपदानों के बीच में खड़ा हुआ था जो घोर अंधकार में था वह उससे बहुत ही दूर थे उसका दाहिना हाथ और उसके बाहिने हाथ से और उसे अल्फा और ओमेगा के जैसे उस पर देखना था ना ही उनके बीच में। अल्फा और ओमेगा जब उसने उसके हाथों को खींच कर फैलाए हुए था और वो यशब और मानिक पत्थर था जो कि बियामिन और रुबेन थे पहला और अंतिम वहाँ वह उसके हाथों को खींचकर फैलाए हुए था वहाँ पर वो खड़ा था। लेकिन याद रखना इससे बाहर आते हुए इससे गड़बड़ी न करें क्योंकि जब उन्होंने यहाँ उनके इन संप्रदायों के नाम को पाया वे ठीक वहीं पर उन्हीं पर मर जाते हैं ठीक वहाँ से नीचे तक। लेकिन उसने कहा ठीक मेथोडिस्ट और पेंटिकॉस्टल के बीच में से बाहर निकलते हुए मैंने एक खुले द्वार को तुम्हारे आगे रखा है आप वहीं पर हैं उस नाम को वापस लौटाया गया है मैंने एक खुले द्वार को रखा है क्योंकि मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ कोई भी मनुष्य पिता के पास मेरे बगैर नहीं आ सकता है। यह क्या है वह खुला हुआ द्वार सकेत सकेत यदि आपने इसमें ध्यान दिया होगा यह सीधा नहीं है यह सकेत है मार्ग सकड़ा जल है कैसे वापस यीशु के नाम में जाते हुए जो आपके पास रहा था आपके पास नहीं मामूली सा जीवन है तुमने मेरे नाम को इनकार नहीं किया है तब फिर यहाँ पर उन्होंने इसे खो दिया है एक कैथोलिक संप्रदाय के अंदर चले गए हैं एक लूथर संप्रदाय से बाहर आए वेस्ली संप्रदाय से बाहर आए तब वे ठीक बाद में पेंटिकॉस्टल के अंदर चले गए लेकिन अंत समय के बस ठीक पहले वो बीज लगभग धरती से चला गया है, इसे बाहर कर दिया गया है, जो धार्मिकता का बीज है। सर्प का बीज बहुत तेजी से और तेजी से और तेजी से बढ़ रहा है, जो इस एटॉमिक युग के लिए तैयार हो रहा है ताकि नष्ट हो जाए। लेकिन उस समय से बस ठीक पहले मैं एक निकलने के मार्ग को तैयार करूंगा, मैं एक खुले हुए द्वार को तुम्हारे आगे तैयार करूंगा। सकेत है वो फाटक और सकड़ा है वो मार्ग, मैं तुम्हारे सामने एक खुले द्वार को रखूंगा और वहाँ थोड़े ही होंगे जो उसमें प्रवेश करेंगे, लेकिन चौड़ा है वो मार्ग जो नाश को जाता है और वह बहुत से इसी वजह से इसमें चले जाएंगे। वहाँ पर आप हैं, ठीक इससे पहले यह महान उजाला को आगे चमकना था। मैं बहुत ही आनंदित हूँ, मैं बस नहीं जानता कैसे इसे व्यक्त करूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। यहाँ है आप, समाप्ति का समय है और मैंने मेरे विषय को छुआ भी नहीं है। मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर बोलना चाहता हूँ, इस पर मैं कैसे भी इसे लेना चाहता हूँ 10 और 15 मिनट के लिए। अब मैं आपको 3 घंटों तक रोके नहीं रखूंगा जैसे मैंने पिछली रात्रि को किया, मैं ऐसा नहीं करने की कोशिश करूंगा। अब यदि उनके पास एक झूठा पानी का बपतिस्मा है, संप्रदाय गलत हैं और वे जो कभी उन फलाना संप्रदायों के पक्ष में हैं, वे गलत चीज को सहयोग करते हैं, वे उस बात का सहयोग करते हैं परमेश्वर जिसके खिलाफ है। ऐसा इन कलीसिया कालों में कहा गया, वचन में ऐसा कहा गया और उन्हें वैश्य कहा गया, क्योंकि वे मनुष्य की आज्ञाओं के सिद्धांतों को सिखाते हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ मैं एक स्थान पर गया, एक फलाना व्यक्ति के पास जो यहाँ पर आया था, जो दैविक चंगाई पर लेख को लिख रहा था, और उसने कहा केवल एक ही बात आपके लिए है भाई ब्रैनम, कहा लोग आपके विरोध में कुछ बात को पकड़े हुए हैं क्योंकि आप पेंटिकॉस्टल के पास जाते हैं। मैंने कहा तो ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मैंने कहा यदि आप मुझे अपने शहर में सहयोग देंगे तो। उसने कहा ठीक है, कहा मैंने इन बातों को लिया है, कहा मैं इसे इन फलाना कलीसिया के बिशप मेथोडिस्ट कलीसिया के लिए लेकर गया हूँ, इस पर कोई भी खींचातानी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कहा मैंने इन बातों को लिया और उन्होंने कहा अब आप देखें, हम मेथोडिस्ट कलीसिया होने के नाते हम अद्भुत कार्यों पर विश्वास नहीं करते हैं। अब आप क्या करोगे? अब आप मेथोडिस्ट कलीसिया को सुनोगे या संप्रदाय को? यदि आप सुनते हैं, आप एक व्यभिचारी धर्मनिष्ठ हैं। आप सोचते हैं बैप्टिस्ट कलीसिया इस तरह के अभियान को सहयोग देगी, क्यों? क्योंकि वे बैप्टिस्ट हैं। बाइबल ने कहा वे वैश्य हैं, उन्होंने अपनी पुत्रियों को आगे लाया है और वे वैश्य थे। क्यों? उसी तरह के सिद्धांतों को ला रहे हैं, मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांत बजाय परमेश्वर के सिद्धांतों के। इसलिए हम बैप्टिस्ट के साथ संस्थागत नहीं हुए हैं, इसी कारण हम मेथोडिस्ट के साथ संस्थागत नहीं हुए हैं। अब हम क्यों पेंटिकॉस्ट के साथ संस्थागत नहीं होते हैं? यहाँ पर आप हैं, यह बिल्कुल सही है। वे पेंटिकॉस्टल उस बात पर बने रहते हैं जहाँ यदि लूथरन कलीसिया रुकी रहती, जहाँ उन्होंने इसे आरंभ किया था, यह पेंटिकॉस्टल रहे होते। लेकिन वे संस्थागत हो गए, तो इसलिए परमेश्वर ने एक और पेंटिकॉस्टल को ऊपर लाया जिसे वेस्ली कहा गया, और इसलिए जब वेस्ली संस्थागत हो गए, उसने एक और को ऊपर उठाया जो बैप्टिस्ट कहलाया। जब वे संस्थागत हो गए, परमेश्वर ने एक और को ऊपर लिया जो कैम्बलेट्स कहलाया। जब वे संस्थागत हो गए, परमेश्वर ने एक और को ऊपर लिया, पेंटिकॉस्ट कहलाए गए। जब वे संस्थागत हो जाते हैं, वह आगे बढ़ जाता है, बस रुक कर और देखें। यह परमेश्वर की दैविक योजना नहीं है, यह परमेश्वर की योजना में नहीं है कि वे संप्रदाय उसके पास हो। इसलिए आप देखिए, इसलिए हम एक संप्रदाय नहीं है। इसे ध्यान रखना, मैंने आरंभ में कहा, अब यदि मैंने आपको ठेस पहुंचाया है, मेरा ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, यह कलीसिया के लिए है। यदि आप यहाँ पर साथ ही बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर रहें, लेकिन यही है जिसके लिए हम खड़े रहते हैं और हम एक संप्रदाय नहीं है। अब संप्रदाय आरंभ से ही झूठा है, झूठे शिक्षक हैं। मैंने कहा था ये आपको ठेस पहुंचाएगा और मैं चाहता हूं कि ठेस पहुंचे, वे पूरी तरह से झूठे शिक्षक हैं। कोई भी व्यक्ति जो उन बातों को जानता है और वह खड़ा रहेगा और समझौता करेगा बैप्टिस्ट के लिए, मेथोडिस्ट, लूथरन, पेंटिकॉस्टल, जानते हुए कि बाइबल कुछ अलग ही बात को सिखाता है, तो वह एक झूठा नबी है, इसके आसपास भी नहीं भटकते हैं, यह बिल्कुल सही है। इसलिए मैं उन असेंबलियों के साथ नहीं जुड़ा हूँ, इसलिए मैं वनस के साथ नहीं जुड़ा हूँ, इसी कारण से मैं बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन के साथ नहीं जुड़ा हूँ, क्योंकि वे झूठे हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि उनके लोग झूठे हैं, मेरा मतलब है उनकी शिक्षाएं झूठी हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाती हैं। पौलुस ने कहा यदि एक वह वहाँ पर चला गया, और मैं आपको दिखाऊंगा जो पौलुस ने कहा इस पानी के बपतिस्मे को लेने से पहले। जब यीशु ने एक बात को लाया, मती 28:19 में पतरस ने 10 दिनों के बाद कहा, तुम में से हर एक जन पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे। अगली बार बपतिस्मा को बताया गया जब फिलिपुस वो सुसमाचारक जब वो वहाँ पर चला गया और सामरियों को प्रचार किया और उसने उनमें से हर एक को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। पौलुस पतरस वहाँ पर आया, या मेरा मतलब पतरस और योन्ना, और अपने हाथों को उन पर रखा, उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया था। तब वे वहाँ पर से आगे चले गए। पतरस बाद में सीधे कुरनेलियुस के घर पर चला गया और जब पतरस वचन को बोल ही रहा था, पवित्र आत्मा उन पर उतर कर आ गया। पतरस ने कहा, हम पानी को नहीं रोक सकते हैं, देखते हुए कि इसने पवित्र आत्मा को पाया है, जैसे हमने आरंभ में कहा और जैसे उसने उन्हें आज्ञा दी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। अब पौलुस इफिसुस के ऊपरी इलाके से होकर गुजरा, उसने वहाँ पर कुछ बैप्टिस्ट लोगों को पाया और उनके पास वहाँ पर एक उनका प्रेरित था जो बाइबल का प्रेरित था और उसका नाम अपौलुस था। वो एक वकील था जो परिवर्तन हुआ था और वह लोगों को बाइबल के द्वारा साबित कर रहा था कि यीशु ही मसीह था। उसने कहा उस मसीहा को इन कामों को करना था, यह मनुष्य मसीहा था। और उनके पास वहाँ पर एक बहुत से लोगों का झुंड था और वे आनंद कर रहे थे और चिल्ला रहे थे। उनके पास बहुत ही अच्छा समय था। अकिल्ला और प्रिस्किल्ला वहाँ जाकर और उनके साथ जुड़ गए थे, उनके साथ संगति कर रहे थे। उनके पास कोई संस्था नहीं हुई थी, उनके पास संगति रही थी। और इसीलिए उन्होंने इस व्यक्ति को देखा जो एक महान व्यक्ति था। वह चतुर व्यक्ति था, वह वकालत करने वाला था और वो एक चतुर व्यक्ति था। तो उन्होंने कहा, अब तुम बहुत ही उस पर बहुत ही अच्छे हो जो तुम जानते हो, लेकिन हमारे पास एक छोटा भाई है जिसका नाम पौलुस है। जब वो आता है उसके पास कुछ अनुभव था, वह जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वह तुम्हें सिखाएगा प्रभु के मार्ग और अधिक सीधा सीधा है यदि तुम बस बैठ कर उसकी सुनते हो तो। अब तुम उस पर कुछ धकेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि वह इस बात के लिए ऐसे ही नहीं खड़ा रहेगा, समझे? लेकिन बस तुम बस आगे बढ़कर और उसकी सुनना। और पौलुस वहाँ पर आता है, उसने उनको सुना, एक बार वहाँ पर देखने लगा, उसने कहा ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम जो बैप्टिस्ट हो पवित्र आत्मा को पाया जब से तुमने विश्वास किया? ओह, उन्होंने कहा हमें यह नहीं मिला है, क्या इस पर नहीं सोचा? समझे? तो ठीक है, क्यों? तो तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ था? ओह, हमारा बपतिस्मा हुआ है, हमने बपतिस्मा लिया है। तो ठीक है, किसने तुम्हें बपतिस्मा दिया और तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ था? बाइबल कहता है कौन से निमित्त, यूनानी और मूल है, कहता है किसके निमित्त और यह कहता है कौन से निमित्त। कहा तुमने क्या बपतिस्मा लिया था? दूसरे शब्दों में तुम्हारा कैसा बपतिस्मा हुआ था? हमारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा हुआ था, वही मनुष्य जिसने यीशु मसीह को उसी पानी के कुंड पर बपतिस्मा दिया। यह बहुत ही अच्छा बपतिस्मा है, क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो? ऐसा दिखाई देता है पूरी तरह से ठीक जुड़ गया है, क्या यह ऐसा नहीं है? ऐसा दिखाई देता है यह सही हुआ होगा यदि वह मनुष्य जो पानी में हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ चलकर गया और यीशु को बपतिस्मा दिया और परमेश्वर ने इसे अंगीकार किया था कि इतना तक कि वह पवित्र आत्मा के रूप में नीचे उतर कर आया और उसके अंदर चला गया और उसने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। ठीक उस बपतिस्मे के बाद मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वह बपतिस्मा सही रहा होगा। और पौलुस ने कहा अब यह और अधिक काम नहीं करेगा, यह और कार्य नहीं करेगा। क्यों ये और कार्य नहीं करेगा? देखा, तुम्हें उस पर फिर से बपतिस्मा लेना होगा। तुम्हारा मतलब है कि हमें जिन्होंने योना के द्वारा बपतिस्मा लिया, जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था, उसे फिर से बपतिस्मा लेना होगा। यह सही बात है। कहा हमें किस तरह का बपतिस्मा लेना अनिवार्य होगा? कहा यीशु मसीह के नाम में। और पौलुस उन्हें वहाँ से बाहर लेकर गया और वहाँ पर उन सबको बपतिस्मा दिया, प्रेरितों के काम 19:5 पर। और जब उन्होंने इसे सुना, उन्होंने यीशु मसीह के नाम में फिर से बपतिस्मा लिया था और पौलुस ने उन पर अपने हाथों को रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। यदि पौलुस ने स्त्री और पुरुषों को उस पर फिर से बपतिस्मा लेने से विवश किया यीशु मसीह के नाम में, यदि मैं कोई और सुसमाचार को प्रचार करता हूँ तब मेरा आत्मा सही नहीं है जैसे पौलुस का था, उसे ये अंगीकार करने दो कि जो मैं लिखता हूँ यह प्रभु की आज्ञा है। और अब गलतियों 1:8 में पौलुस ने कहा यदि स्वर्ग से एक और दूत आता है, प्रकाशमान चमकता हुआ दूत, वह किस बारे में बोल रहा था? एक प्रकाशन, प्रभु का नाम धन्य हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा प्रकाशन कितना अच्छा है। आपको हमारी सुबह की सभा याद है, उरीम तुम्मीम? यदि कुछ तो बात आती है और यह शुद्ध रूप से प्रकट होती है, वह एक झूठा है, एक झूठा दूत है और मनुष्य जो उसके संदेश को तैयार करता है वह झूठा नबी है। वहाँ पर केवल एक ही बपतिस्मा लेने का जरिया होगा जो यीशु मसीह के नाम में है। यदि आपने उस तरह से बपतिस्मा नहीं लिया है तो वहाँ पर एक बपतिस्मा का कुंड रुका हुआ है। यह सही बात है। गलत रूप से मुझे एक स्थान दिखाओ जहाँ किसी ने भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में कभी बपतिस्मा लिया हो। यह पवित्र लिखावट में नहीं है। यह क्या है? यह एक सिद्धांत है जो कैथोलिक कलीसिया से आरंभ हुआ। हम इसका सहयोग कर सकते हैं। हमारे पास नीसिन पिताओं के सिद्धांत है, हमारे पास इसका इतिहास है, हमारे पास हिस्ट्री ऑफ टू बेबीलोन वो किताब है, हमारे पास जोसेफस की लिखावट है, हमारे पास सारे ऐतिहासिक इतिहास है। और जोसेफस ने प्रभु यीशु के समय को लिखा। हिस्लॉप की टू बेबीलोन उसके बाद लिखी गई, एंटी निशियन फादर्स उसके बाद लिखी गई, इससे पहले कैथोलिक कलीसिया बने। और तब वो कैथोलिक कलीसिया अंदर आती है और इस सबको लेकर बाहर कर दिया और खुद का अधिकार जताने लगे और पापल रोम ने और पागल रोम को बनाया था। और वहाँ पर उन्होंने झूठे पानी के बपतिस्मे को लाया जो जल का छिड़कना है और यीशु के नाम को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में कर दिया। और यीशु ने कहा उस प्रेरणा के नीचे जो उसने योना को पत्मस टापू पर दिया, तुम्हारे पास एक नाम है जिसमें तुम जी रहे हो लेकिन तुम मरे हुए हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा यह एक मरा हुआ नाम है। मैं आपको छोटा सा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ जो स्विट्जरलैंड जर्मनी और उन स्थानों पर का है जहाँ पर मैं गया था। कैसे भविष्य बताने वाले काम करते हैं, किस तरह से दुष्ट आत्माएं घूमते फिरते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा विश्वास करें, आपका एक पास्टर होने की नाई, क्योंकि मैं आप ही वो एक हैं जिनके लिए मैं बोलता हूँ। शैतान पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से घूमते फिरते हैं। वे उनके पंखों को और हर एक चीज को काटते हैं और एक दूसरे पर जादू टोना चलाते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम के जरिए से, और इसे तीन बड़े नाम कहते हैं। और इसकी माता कैथोलिक कलीसियाएं हैं और वह इन छोटी छोटी मूर्तियों के सामने जाते हैं और अपने घुटनों को वहाँ पर टेकते हैं और कैंची से उनके पंखों को काटते हैं और इसे पीछे की तरफ घुमाकर अपने पड़ोसियों पर जादू टोना और इत्यादि करते हैं और वे जलने तक मार डालते हैं और इसके लिए सब कुछ करते हैं। स्विट्जरलैंड में मैं मेरे हाथों को उठाए हुए कार्यपथ पर था इस तरह से, जहाँ वे सच्चे पुरुष और स्त्री मर गए थे जब उन्होंने उनके जीवों को काट कर निकाल दिया था और उनकी आंखों को इस गर्म सलाख से जलाकर निकाल दिया था और इत्यादि उस व्यभिचारी कैथोलिक कलीसिया ने। केवल इतना ही नहीं, लेकिन आपकी पूर्व एंग्लिकन कलीसिया भी और प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने उसी बात को किया और उन्होंने उन पर जादू टोनों को उन पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से कर डाला। आपके भाई और पास्टर, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा था परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इन चीजों के विरोध में होना, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जानना है मैं किस बारे में बात कर रहा था। जहाँ पर एक स्त्री इस कलीसिया में आकर और मुझ पर दोष लगाती है और कहा वह आत्मिक बातों को लेकर मूर्ख बना रहा है, परमेश्वर जो स्वर्ग में है जानता है यह सब किस बारे में था। मैं किसी मनुष्य को नहीं बना सकता हूँ, मैं नहीं। जब उन्होंने मुझे बताया कि पिगाले जो पेरिस में है, जो सचमुच में बहुत ही कुख्यात जगह है, मैंने कैसे जाना, लेकिन मैं वहाँ पर जानने के लिए गया कि यह सही था या गलत। मैं दो या तीन और भी सेवकों को वहाँ उन स्त्रियों और उन बातों के लिए लेकर गया जो रास्ते के ऊपर निवस्त्र और आदि थी। यह सच्चाई है। कैसे मैंने जाना कि रोम उस सात पहाड़ियों पर बसा है? मैंने कैसे जाना वो के पास विकारिबस फिलिडी है? किसी और ही शब्द को इसके लिए लेना था। मैंने कैसे जाना कि त्रिकोण ताज पोप के ऊपर था, स्वर्ग धरती और अधोलोक के अधिकार का प्रतिनिधि है? मैंने इसे कैसे जाना जब तक मैं वहाँ जाकर उसे देख नहीं लेता था? कैसे मैंने जाना कि वहाँ पर एक जीवित परमेश्वर था, ना ही किसी धर्म शिक्षा के नीचे, ना ही कुछ भावना की अवधि के किसी ज्ञान विचारधारा से जो बीते हुए युग में से होकर और जैसे नास्तिकों ने बताया हो। लेकिन एक दिन वहाँ नीचे उस ओर मैंने उससे मिला और उसके साथ आमने सामने बात की। यह बातों को अलग बनाता है। यह बिल्कुल सही बात है। आत्मिक रूप से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के जरिए से कार्य करते हैं। मैं एक सभा में खड़ा हुआ था जहाँ पर जादू टोने करने वाले लोग काम कर रहे थे। तुम ये मत सोचना कि वे तुम्हें चुनौती नहीं देंगे, वह वहाँ पर खड़े थे। उन्होंने एक टेबल को हवा में उछाला और यह हवा में इधर उधर घूम रहा था और एक गिटार बज रहा था। मैं वहाँ पर खड़ा हुआ और वह चाहते थे कि मुझे वहाँ से बाहर निकाल दें। मैंने कहा तुम गलत हो, और उस आत्मा ने वापस उनसे बातें की। आत्मा परमेश्वर होने के लिए दावा कर रहा था, कहा यह परमेश्वर था میں نے کہا یہ غلط ہے، یہ ایک شیطان ہے. انہوں نے کہا یہ منشیہ ایک اوشواسی ہے. میں نے کہا میں ایک اوشواسی ہوں ان بےہودہ باتوں کے لیے، کارن یہ میرا پربھو نہیں ہے، یہ جادو ٹونے کے کام ہے، یہ شیطان سے ہے. میں نے کہا اب یہاں میں اس سامر سے بھرے نام کے لیے کوشش کر رہا ہوں جس سے میں نے بپتسمہ لیا ہے. میں نے کہا سور کے اونچے نام میں مجھے سچائی کو بتاؤ، یہاں تک انہوں نے مجھے اتر بھی نہیں دیا. میں نے کہا اس پوتر کلیسیا کے نام میں سچائی کو بتاؤ، وہ اتر نہیں دیں گے. میں نے کہا پتا پتر اور پوتر آتما کے نام میں مجھے سچائی بتاؤ، اور وہ مجھے اتر نہیں دیتا ہے. لیکن میں نے کہا یشو مسیح کے نام میں مجھے سچائی کو بتاؤ. اس نے کہا جی ہاں یہ غلط ہے، پرمیشر جانتا ہے کہ یہی سچائی ہے. جی ہاں شریمان. اوہ پتا میں وشواس، پتر میں وشواس، وشواس پوتر آتما میں، یہ تینوں ایک ہیں. شیطان کاپیں گے، پاپی جاگ اٹھیں گے. پربھو مسیح میں وشواس ہر چیز کو ہلا دیتا ہے. جی ہاں شریمان، اس نام کے دوارا بنے رہو. آپ کے پاس ایک نام ہے کہ آپ جیوت ہو لیکن تم مرے ہوئے ہو. وہاں پر آپ کی کلیسیا ہے، وہی پر ہے وہ. دھیان دینا، وہاں پر ایک استری بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر بھلی دکھنے میں اچھی سندر استریاں ہیں اس کلیسیا میں آج صبح بیٹھی ہوئی ہیں. نوجوان استری، مدھی عمر کی استری، بوڑھی استریاں، یہ ساری بھلی ہیں. وہ کسی کی تو پتنی ہے، کسی کی تو بیٹی ہے، کسی کی پریہ جن ہے، ایسے ہی اتیادی وہ ہر ایک ہیں. یہاں پر ایک ہی شریمتی برینم بیٹھی ہوئی ہے، آپ ہر ایک کی استریاں ہیں، لیکن وہاں پر ایک ہی شریمتی ولیم برینم ہے، وہی ایک ہے جو میرے ساتھ گھر جاتی ہے، وہی ایک ہے جو میری پریہ جن ہے، وہی ایک ہے جو میرے بچوں کو پالتی ہے. وہاں پر آج سنسار میں بہت سی اچھی کلیسیاں ہیں، لیکن وہاں پر ایک ہی شریمتی یشو ہے جو واستوک سچی پھر سے جنم پائی ہوئی پرمیشر کی سرشتی کو آگے لا رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ میرا کیا مطلب ہے، کیا آپ نہیں جانتے؟ اس کا نام میتھڈسٹ نہیں ہے، اس کا نام بیپٹسٹ نہیں ہے، اس کا نام یشو ہے، شریمتی یشو. نشچے ہی وہ ہے، وہ لوگوں کو آگے لا رہی ہے. میتھڈسٹ کلیسیا کے سدسیوں کو نہیں، وہ بیپٹسٹ کلیسیا کے سدسیوں کو نہیں لاتی ہے، یا پیسپیڈیرین یا کیتھولک، وہ انہیں لا رہی ہے جو یشو مسیح میں جنمے، جڑ میں ہیں، بنیاد میں ہیں. وہاں ہے وہ، وہی ہے وہ. میں بہت ہی خوش ہوں کہ میں اس کے ساتھ ہوں. وہ ایک رہسیہ کلیسیا ہے، اس کے پاس کوئی سمپردائے نہیں ہے. وہ اپنے ساتھ ان نام چیم ناموں کو، بڑی عمارتوں کو لے کر نہیں چلتی ہے. وہ وہاں پر ملتی ہے جہاں کہیں پر دیہ کے سدسیہ ایکتر ہو کر اکٹھا ہوتے ہیں. وہ آتما اور سچائی میں آرادھنا کرتے ہیں. وہ جگت کی بنیاد ڈالنے سے پہلے سے ٹھہرائے گئے تھے. ایک اور وچن ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں بند کر دوں گا، اور میں آج رات کے لیے باقی کا چھوڑ دوں گا. لیو، بعد میں آج رات آپ اسے لے سکتے ہو. آئیے کچھ منٹ کے لیے ایفیسیوں میں جائیں گے، کیول اس ایک وچن کو پڑھیں گے، پھر میں اس کے ساتھ آپ کو چھوڑ دوں گا. اب ہم دیکھیں گے بائبل نے اب اس کے بارے میں کیا کہا. میں اس مہان ششک پولس کو لینا چاہتا ہوں جو کہ وہاں پر کبھی بھی اس کے جیسا کوئی نہیں ہوا ہے. وہ انیہ جاتی کی کلیسیا کے لیے پریرت تھا. تو ٹھیک ہے، ایفیسیوں ایک لیں گے. اب ہم کچھ ایک منٹ میں بند کرنے جا رہے ہیں. میرے پریہ متروں، اسے دھیان سے سننا. دیکھنا، پولس اسی پرکار کی کلیسیا کو پرچار کر رہا ہے جو آج صبح میں کر رہا تھا. پولس کی اور سے جو یشو مسیح کا پرینت ہے، اس کی اچھا سے پیسپیٹیرین کلیسیا کی، کون سی کلیسیا کی؟ پرمیشر کی اچھا سے ان پوتر اور مسیح یشو میں وشواسی لوگوں کے نام جو ایفیسیس میں ہیں. اب یاد رکھنا، وہ سارے سنسار بھر میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن یہ ایفیسیس کا جھنڈ تھا جس سے وہ بول رہا ہے. اب وہ سنسار کے لوگوں سے بات نہیں کر رہا ہے، وہ سارجنک کلیسیا کے سدسیوں سے نہیں بول رہا ہے، وہ انہیں جو سنت ہیں ان کی اور نردیشت کر رہا ہے. آئیے دیکھیں گے، اور جو مسیح یشو میں وشواس یوگی ہیں. ہم کیسے یشو مسیح میں ہوتے ہیں؟ ایک آتما کے دوارا ہم سب نے بپتسما لیا ہے، وشواس یوگی رہنے کے دوارا. تم کیسے جانو گے کہ تمہیں پوتر آتما ملا ہے؟ ہم ہو سکتا ہے آج رات اس بات کو لیں گے، سمجھے؟ تو ٹھیک ہے، یشو مسیح میں ہمارے پتا پرمیشر اور پربھو یشو مسیح کی اور سے تمہیں انگرہ اور شانتی ملتی رہے. ہمارے پربھو یشو مسیح کے پرمیشر اور پتا کا دھنیواد ہو کہ اس نے ہمیں مسیح میں سورگی استھانوں میں سب پرکار کی آشیش دی ہے. آپ جانتے ہیں، اسے لینے کے لیے بہت ادھک چلانا نہیں ہے، اسے لینے کے لیے چیخنا نہیں ہے. یہ ٹھیک بات ہے، اس کے ویروت میں کچھ نہیں ہے. यह सब ठीक है। यह इसे नहीं लेता है, यह एक समर्पित हुआ हृदय लेता है जो स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ है, आत्मा से उन बातों को खा रहा है। और आत्मा किस बात पर खिलाता है? भावना, कुल मिलाकर नहीं, यह भावना को लाता है। देखा, लेकिन आप याद रखिए, आपको वो दर्शन याद है जो उस बारिश और गेहूं जंगली दाने के बारे में था। याद रखना, जब आवश्यकता की बारिश होती है, वहाँ पर एक छोटा सा धतूरा है, वह अपने सर को नीचे की ओर झुकाए हुए होता है। वह गेहूं का दाना उसके सर को नीचे की ओर झुकाए हुए होता है। जब बारिश आती है, वे दोनों उछलते और चिल्लाते हैं, वही बारिश, लेकिन उनके फलों के द्वारा तुम उन्हें जानोगे। देखो, तुम पर अनुग्रह हो परमेश्वर हमारे पिता से। अब ध्यान देना, उसके अनुसार, अब चौथा पद, उसने हमें उसकी सुमति के अनुसार उसमें चुन लिया है। अंतिम बेदारी पर, जब हम एक सदस्य बनते हैं, बैप्टिस्ट या मैथो नहीं, चुना गया है इससे पहले कि वे मिले हों। जी हाँ, जगत के बुनियाद डालने से पहले उसने हमें तभी चुन लिया था। ना ही हमने उसे चुना है, उसने हमें चुना है, समझे? उसने हमें तभी जगत की नींव डालने से पहले ही चुना है, जिससे हम पवित्र हों। हम कैसे पवित्र हुए थे? ना ही कि हमने जो किया, लेकिन जो उसने हमारे लिए किया है, क्योंकि हम नहीं हो सकते हैं। आप कैसे एक सुअर को एक मेमना बना सकते हैं? भाई रॉय, आपने सुअर और मेमना दोनों को पाला है, आप नहीं, आप उन्हें नहीं मिला सकते हैं। एक सुअर बस वो यहाँ वहाँ जाकर और सब तरह के पदार्थ को खाता है जो वो खा सकता है। वो वहाँ कीचड़ के ढेर में जाएगा और अपने पेट को भरेगा। तो आप इसके लिए बुरा नहीं महसूस करते हैं? आप सोचते हैं वह सुअर ही तो है जो इसी तरह से है, वह एक अच्छा सुअर हो सकता है, ऐसा ही है। लेकिन आप एक मेमने को उसके आसपास नहीं देखते हैं, वो उसे रात्रि के भोजन के लिए निमंत्रण नहीं दे सकता है, वो नहीं आएगा, नहीं, तो क्या बात है, क्योंकि वह एक सुअर है। आप उसे जाकर कहें कि यह गलत है, परमेश्वर धन्य है, मैं एक सुअर हूँ, आप उसे उसके स्थान पर ही रखें, आप वहाँ जाकर और एक पवित्र पाखंडी बने रहें, यदि आप चाहते हैं तो आप वहाँ पर हैं। यदि आप संसार से प्रेम करते हैं और संसार की चीजों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का प्रेम आप में है भी नहीं, वचन ने कहा। अब ना ही क्योंकि मैंने कचरे को खाना छोड़ दिया है जो मुझे एक सुअर से अलग बनाता है। देखना, यह मुझे अब एक सुअर नहीं बनाता है, यह ऐसा नहीं है, लेकिन जब मेरा स्वभाव बदलता है। ओह, मैं सोचता हूँ उन्होंने चारों ओर एक बाड़े को लगाया है, उन्होंने बंद कर दिया है, मुझे इसे नहीं करना चाहिए। ओह नहीं, आप इससे कुछ भी बंद नहीं कर सकते हैं, आपने तो अभी फिर से जन्म लिया है, ऐसा ही है, आपका अभी बदलाव हो रहा है, यह सही बात है। लेकिन यदि आप उस मेमने के आत्मा को लेकर और सुअर के अंदर डाल सकते हैं, वो मेमना उसी बात को करेगा, बस सुअर उसी चीज को करेगा, मेमने का आत्मा वो उसमें करेगा, और वो मेमना फिर से वापस मुड़कर उसी चीज को करेगा जो सुअर ने किया है। अब आप देखना, आप जो सुअर हैं, आप कहाँ पर हैं, समझे? यह बिल्कुल ठीक बात है, यह सही है, समझे? आप बाहर जाते हैं और संसार की चीजों से प्रेम करते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं और इन सारी चीजों को करते हैं, आगे बढ़कर यह बताते हैं कि आप क्या हैं, उनके फलों के द्वारा तुम उन्हें जानोगे। क्या मनुष्य ऊंट कंटारों से अंजीर तोड़ते हैं, समझे? नहीं नहीं, आप अंजीर के पेड़ों से अंजीर तोड़ते हैं, आप सेब के पेड़ों से सेब तोड़ते हैं, आपको कांटों के पेड़ से कांटे ही मिलेंगे, यह सही बात है। अब ध्यान दें, नजदीक से अब देखना, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालकपन पुत्र हों, कि उसने हमें पहले से ठहराया कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेत में दिया। किसने इसे किया? क्योंकि मैंने शराब पीना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, नहीं, उसने इसे किया, उसने मुझे बनाया जगत की बुनियाद डालने से पहले उसके अनुग्रह की उपस्थिति में सेत में दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया है, इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं हुआ है, मैं आरंभ से ही सुअर था, मैं एक पापी था, मैंने एक शराबियों के परिवार में जन्म लिया, कच्ची शराब के बीच पला बड़ा, विस्की के ड्रम के ऊपर बैठा रहता था, लज्जाप्रद बात है, यह सही बात है। केंटकी के कच्चे शराब बनाने वालों ने कभी एक जोड़ी जूते भी नहीं पहनी जब तक मैं एक बड़ा लड़का न हो गया था, मेरे बाल कंधे तक लटकते रहते थे, कच्ची शराब के ड्रम के ऊपर वही बैठा रहता, कच्ची शराब को बनाता, फिर भी पवित्र आत्मा मेरे पास आता है, जब मैं 7 वर्ष का था, कहा तुम उसकी एक बूंद को भी मत छूना, और तुम उन छोटी लड़कियों को मूर्ख बनाते हुए यहाँ वहाँ मत घूमना और एक सिगरेट को मत पीना, तम्बाकू को मत चबाना। ओह प्रभु, यह क्या था? यह पिता की भली इच्छा थी जगत की बुनियाद डालने से पहले, जिससे कि वह मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजे और उसकी भेड़ों की अगुवाई करूं। परमेश्वर उसे आशीष दे और सदा के उस महान नाम के लिए मैं उसकी बाइबल के साथ बना रहूंगा। डूबू या तैरूं, प्रचलित हूं या प्रचलित न हूं, मुझसे कोई प्रेम करे या न करे, मैं उसे प्रसन्न करूंगा। मैं वही करना चाहता हूं जो उसे प्रसन्न करता है। यदि बैप्टिस्ट मुझसे मुड़ जाते हैं, मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल, उनके आरंभिक प्रमाण के ऊपर अन्य भाषा में बोलना पवित्र आत्मा का होना है। यही वो कारण है हम पेंटिकॉस्टल नहीं हैं। हम विश्वास नहीं करते हैं कि अन्य भाषा में बोलना तुम्हें पवित्र आत्मा से भरा हुआ बनाता है। हम सोचते हैं ये एक सुअर के खलियान में रहने से अधिक और कुछ नहीं है। नहीं श्रीमान, हम सोचते हैं एक राजा के महल में रहना तुम्हें एक राजा बनाता है, ये उससे अधिक और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आप एक दास हो सकते हैं, समझा, आप कुछ भी हो सकते हैं। नहीं श्रीमान, हम विश्वास करते हैं कि आपने पवित्र आत्मा को एक अनुभव के द्वारा पाया है, न ही एक वचन के काल्पनिक बुद्धिमत्ता के विचारधारा के द्वारा, लेकिन एक अनुभव के द्वारा जिसे केवल तुम ही जानते हो। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि यह पवित्र आत्मा है कि नहीं है, ध्यान देना इसके बाद आपके जीवन का आदर्श कैसा है, यह बताएगा कि किस तरह का एक आत्मा तुम्हारे अंदर आया है। हो सकता है आप एक अन्य भाषा में बोलें और हो सकता है आप ना बोलें, लेकिन क्यों पेंटिकॉस्टल इस तरह की एक भयानक बात को करते हैं? इसे पकड़ें, पेंटिकॉस्टल ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि आरंभ में जब परमेश्वर ने वहाँ पर वापस लौटाना आरंभ किया, 40 वर्ष पहले दानों को वापस लौटा रहा था, किसी ने तो अन्य भाषा में बोलना आरंभ किया, और अन्य भाषा में बोलना सबसे छोटा दान है। पौलुस की शिक्षा के अनुसार सारे दानों के समूह में से सारे दानों में का सबसे छोटा दान अन्य भाषा में बोलना है। और जैसे ही उन्होंने इसे किया, वे उत्तेजित हो गए और एक संस्था को बना दिया और इसे एक आम संगठन कहा, जो कि असेंबली ऑफ गॉड है। अब मैंने उनमें से कुछ सबसे अच्छे व्यक्तियों से बातें की, उनके सबसे अच्छे धर्म शिक्षाप्रद लोगों से, और वे कहते हैं, भाई ब्रैनम आप सही हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? यदि हम उसके विरोध में खड़े होते हैं, हमें लात मारकर बाहर निकाल देंगे। और हमारे बारे में हमारी कलीसिया क्या सोचेगी जब हम उन्हें वर्षों से सिखाते आए हैं कि अन्य भाषा में बोलना ही पवित्र आत्मा का प्रमाण है? क्या होगा यदि इसे अब हम बदल देंगे? यही संस्थाओं का वो श्राप है। प्रभु धन्य है, हमारे पास कोई संस्थाएं नहीं है, बस जैसे आत्मा अगुवाई करता है हम इसे ले लेते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने लोगों को अन्य भाषा में बोलते देखा है, मैंने जादू टोने और ओझाओं को देखा है, और मिशनरी भी उसी बात को जानते हैं जो अक्सर उन जादूगरों और शैतानों से व्यवहार किया है। मैंने उन्हें खड़े होकर विभिन्न भाषा में बोलते देखा है और कचरे को उठाकर उनके सर के पीछे फेंकते देखा है और खुद को धारदार चीज से काटते हुए देखा है और अन्य भाषा में बोलते और इसे अनुवाद करते देखा है। और आप कहते हैं यही पवित्र आत्मा है? निश्चय ही यह नहीं है, यह एक शैतान है। यीशु ने कभी नहीं कहा उनके अन्य भाषाओं के द्वारा तुम उन्हें जानोगे, लेकिन उनके फलों के द्वारा तुम उन्हें जानोगे। और इफिसियो 5:1 में कहा कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, भलाई, सज्जनता, धीरज, दीनता, विश्वास, संयम है। क्या यह सही है? आप वहाँ पर हैं। अब यदि आप एक मेथोडिस्ट हैं, उसी तरह के फल आपके साथ होंगे कि आप जल्द से क्रोध होने वाले नहीं हैं, आप तुरंत झगड़ा नहीं करेंगे। यदि आपके पास संयम है, इस कारण से आपके पास प्रेम है, आप हरेक का विचार करते हैं। यदि आपका पहला प्रेम मसीह है, आपका दूसरा वो व्यक्ति है, तीसरे आप होने दें, इसी तरह से आगे। यदि आप आगे बढ़ते हैं, सहनशीलता मिलती है, सज्जनता, धीरज, विश्वास। ओ प्रभु, आप कहते हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर है और वहाँ पर दैविक चंगाई है, वो पवित्र आत्मा आज वैसा ही है। अब आप कहते हैं एक मिनट रुकना, मुझे मसीह कलीसिया में सिखाया गया है, अद्भुत काम के दिन बीत गए हैं, आपके पास एक शैतान है। यह सही बात है। आप कहते हैं तो ठीक है, मुझे बपतिस्मा लेना होगा, बाइबल में इस तरह की ऐसी कोई बपतिस्मा होने की बात नहीं है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। मैं ठीक अब इसे देखता हूँ, यह वचन में है, यह प्रभु यीशु का नाम है, हर कहीं यह प्रभु यीशु का नाम है। एक मिनट रुकना, हम तुम्हें असेंबलियों से बाहर निकाल देंगे, तुम उसके लिए पीछे हटते हो, तुम्हारे अंदर एक गलत आत्मा है, तुम एक झूठी शिक्षा को सुन रहे हो या एक गलत नबी को सुन रहे हो। अब आप एक स्थान को दिखा दें जहां उन्होंने कभी बपतिस्मा लिया था, जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से है, और मैं उसे आपके लिए छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें हर एक स्थान से दिखाऊंगा कि उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। अब कौन सही है, असेंबलीज या बाइबल? यदि आप कहते हैं तो ठीक है, मुझ पर जल का छिड़काव किया गया है, धन्य परमेश्वर, मेरे लिए यह बस उतना ही अच्छा है। आपके पास कुछ ज्यादा शिक्षा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, उन पर जल का छिड़काव करो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि पानी को ऊपर से डालो या पानी में डुबाओ? मैं परवाह नहीं करता यह कैसा दिखाई देता है। बाइबल कहता है बपतिस्मा लेना है, और बपतिस्मे का मतलब होता है डुबाए जाना है। आप कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, तो ठीक है, क्या हो यदि परमेश्वर ने मूसा को बताया अपने जूतों को निकालो, तुम पवित्र भूमि पर हो। मूसा ने कहा होता इससे बहुत तकलीफ होती है, मैं बस अपनी टोपी को निकालूंगा, जूतों के बंद को खोलना पड़ता है। क्या यह उतना ही ठीक होगा? नहीं श्रीमान, परमेश्वर ने उससे कभी भी बात नहीं की जब तक उसने अपने जूतों को नहीं निकाला, और परमेश्वर कभी भी कलीसिया से बात नहीं करेगा जब तक ये मसीह के रखे गए उल्लेखों और सिद्धांतों पर वापस नहीं आते हैं, और किसी भावना या किसी संस्थाओं के द्वारा अधिकार नहीं किया गया है ताकि इसे इस तरफ से और उस तरफ से खींचे। उन्हें वापस आना होगा अद्भुत कार्यों पर विश्वास करते हुए, चिन्हों पर विश्वास करते हुए, पवित्र आत्मा में विश्वास करते हुए, यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने पर, और इन सारी चीजों पर उन्हें उस सब पर वापस आना होगा, या तो परमेश्वर उनसे कभी बात नहीं करेगा। ये बिल्कुल सही बात है, यही है जहाँ पर कलीसिया है, इसलिए हम संप्रदाय नहीं है, यह बिल्कुल यही है हम क्यों संस्थाओं से ताल्लुक नहीं रखते हैं। हम बाइबल पर विश्वास करते हैं, और फिर उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं, इसकी बहुत सारी बातें, लेकिन हम खुले रूप से खड़े हैं, प्रभु यीशु बस इसे प्रकट करें और हम उजाले में चलेंगे। यह एक सुंदर उजियाला है, हवा से आता है जहाँ दया की कुछ बूंदे चमकती है, हमारे चारों ओर चमकती है दिन को और रात को। यीशु वो जगत का उजियाला है, न ही मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लेकिन यीशु जगत का उजियाला है। ये सारे संत उजियाले को जाहिर करते हैं, यीशु जगत का उजियाला है, तब स्वर्ग की घंटियां बज उठेंगी, यीशु जगत का उजियाला है। अब हर एक जन आराधना के रूप में हम उजाले में चलेंगे। यह एक सुंदर, जरा एक मिनट के लिए इसे रोके, देखो यह वहां से आता है जहां दया की कुछ बूंदे चमकती हैं, हमारे चारों ओर चमकती है दिन को और रात को। यीशु वो जगत का उजाला है। क्या आपके पास इसकी तुलना में यीशु और उसका वचन नहीं होना है, या फिर इसके बारे में किसी संप्रदायों के विचार होना है, तो कितने लोगों के पास इसकी तुलना में यीशु और उसका वचन होना है? अब वहाँ एक स्थान को बताएं जहाँ परमेश्वर ने कभी संप्रदाय को नियुक्त किया हो, एक स्थान बताएं जहाँ वचन में उसने कभी एक स्त्री प्रचारक को रखा हो या उस एक को ठहराया हो, एक स्थान को बताएं कि जहाँ पर कभी कोई एक व्यक्ति पर जल का छिड़काव किया गया या पानी उंडेला गया हो, एक स्थान बताओ कि किसी को सिवा यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया हो, एक व्यक्ति को बताओ कि कभी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ था, आकर मुझे दिखाओ जहां हर व्यक्ति ने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। अब हम इससे और ज्यादा गहरी बातों में जा रहे हैं, अब हम उसके अंदर जा रहे हैं जो आरंभिक प्रमाण है और इत्यादि है, और बस यह देखेंगे यह कहां पर है। अब यदि वह इसके विरोध में कुछ शिक्षा देते हैं, उन बातों की शिक्षा देते हैं जो बाइबल में नहीं है, याद रखना मैं एक स्थान के लिए पूछ रहा हूँ जो कभी एक संस्था रही थी, मुझे बस एक दिखाइए, फिर कोई तो गलत है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि एक यहाँ पर होगा, एक वहाँ पर होगा, हो सकता है यदि वो एक नहीं था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे एक स्थान दिखाओ वहाँ पर कभी एक संप्रदाय थी उस अंतिम प्रेरित के मरने के पश्चात। मुझे कैथोलिक कलीसिया के इसे आरंभ करने के बाहर एक कलीसिया दिखाओ, मुझे एक स्थान दिखाओ जहाँ बाइबल संप्रदायों को दोषी नहीं ठहराता है, तब आप एक संप्रदाय क्यों हैं? मुझे एक स्थान दिखाओ, अभी एक स्थान जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जल का छिड़काव किया गया उसके अपराधों की क्षमा के लिए। मेरा मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक और वहाँ पर एक, अब मुझे सारे वचन में से एक स्थान को दिखाओ। मुझे सारे वचन में से एक स्थान दिखाओ जहां किसी को कभी अपराधों की क्षमा के लिए पानी उड़ेला गया हो। मुझे एक स्थान दिखाओ जहां किसी को भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया हो। सिर्फ एक स्थान, एक व्यक्ति, जहां पर एक व्यक्ति को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया हो। मुझे एक स्थान दिखाओ जहां परमेश्वर ने कभी एक कलीसिया में स्त्री प्रचारक को रखा हो या उसके होने के लिए कहा हो या कहां पर है। यही एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं आपके प्रश्न को जानना चाहता हूं। अब पुलपिट पर खड़ा हूं, मुझे दिखाएं जहां इन चीजों में से एक है। आज रात को मैं क्षमा मांग लूंगा। यदि ये नहीं है तो तब आप इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, तब आप उन्हें क्यों पूरा नहीं करते हैं? हर एक जन हमारे पास आए, आप किसी भी तरह संभावित रूप से, यदि आपका नाम मेमने के जीवन की किताब में है, आप उजाले में चलेंगे, आप उजाले को देखेंगे, परमेश्वर इसे प्रकट करेगा और आप इसमें चलेंगे। यह बिल्कुल सही बात है, समझे? अब क्या मैं आपको वापस एक कलीसिया की ओर लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बाइबल की ओर वापस लेकर जा रहा हूँ। अब पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने क्या कहा? यदि कोई स्वर्गदूत भी आकर इसके अलावा कुछ और प्रचार करे, वह श्रापित हो। परमेश्वर ने कहा, हर एक मनुष्य का वचन झूठा और मेरा वचन सच्चा ठहरे, इसलिए मैं परवाह नहीं करता कोई भी कलीसिया क्या कहती है। पेंटिकॉस्टल, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, परमेश्वर का वचन सच्चा है। उन्होंने इसको क्यों आरंभ किया? संप्रदाय होने के लिए। पेंटिकॉस्टल असेंबली ऑफ गॉड आज कुछ भी देंगे, ठीक वहाँ जो उन बड़े शिक्षकों के हृदय की गहराई में होता है। यदि उनके पास कभी भी उस मत का आरंभ नहीं होता था, आरंभिक प्रमाण अन्य भाषा में बोलना है, वे जानते हैं यह गलत है, यह पानी को नहीं पकड़ेगा। निश्चय ही नहीं, मैं आपको परमेश्वर की बाइबल के द्वारा साबित करूंगा कि आप पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते अन्य भाषा बोलने के द्वारा, यह वहाँ पर नहीं है। ओह, आप सोचे, जी हाँ, निश्चय ही यह लिखा हुआ है, इतना नजदीक कि यहाँ तक ये चुने हुए को भी भरमा देगा, समझे? उसने इसे बुद्धिमान और ज्ञानियों से छुपाया है और इसे बालकों पर प्रकट किया है। यह एक आत्मिक प्रकाशन है, आप देखना, प्रकाशन इसे ले लेता है और इसे ध्यान दे, इसे उजागर करता है। देखना, वहाँ पर आप हैं, समझे? वहाँ पर वह चीज है जो आप देखना चाहते हैं। मित्रों, देखो, यह वहाँ पर है। हम परमेश्वर को पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारा शिक्षक है, और वह बस ऐसे ही जाकर और कुछ पुरानी काल्पनिक विचारधारा को नहीं लेता है और इसे यहाँ पर लाकर और कहे, ओ हालेलुया, ठीक यहाँ पर है, यह ठीक यहाँ पर लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा वापस जाकर और आपको वचनों के अंदर से लेकर जाता है, इसे ठीक स्थान पर रखता है, ठीक वचन में से होते हुए, समझे? यही है जब आपको सच्चाई मिलती है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वचन पर वचन होना ही है, वचन पर वचन और पंक्ति पर पंक्ति पर पंक्ति होना ही है। इसी तरह से बाइबल ने इसे करने के लिए कहा है। आप कहते हैं आप संस्थाओं को दोषी ठहरा रहे हैं, नहीं श्रीमान। क्या आप स्त्री प्रचारक पर दोष लगा रहे हैं? नहीं श्रीमान। आप अन्य भाषा के बोलने को दोष लगाते हैं? नहीं श्रीमान। आप इन लोगों पर दोष लगाते हैं जिन्होंने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है? नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान। लेकिन मैं कहता हूँ, यदि वे अब इसे और अच्छा जानते हैं, परमेश्वर ने इस उत्तरदायी के लिए ले लेगा। यदि वे उजाले में नहीं चलते हैं, हो सकता है कि अब तक आप इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन आप इसे अब से जानते हैं। देखा, अब आप यदि नहीं सोचते हैं कि यह सही है, वचन से जांचें, फिर अपने उस स्थान को बताएं और वापस आकर आज रात इसे इस मेज पर रख दें और हम देखेंगे कि यह सही है या गलत है, तब आप जाकर इसे खुले दिमाग से और खुले हृदय से जांचें। अब इस तरह की शिक्षा ब्रैनम टैबरनेकल के लिए है। देखो, ठीक यहाँ पर, बिल्कुल ठीक यहाँ पर, वहाँ पर कुछ भी। मैं चाहता था यह ब्रैनम टैबरनेकल ना हो, मैं इसे चाहता था यह द टैबरनेकल कहलाए। यहाँ तक कि मैंने अपने नाम को इसके साथ नहीं जोड़ना चाहा। मैं इसे कलीसिया में बदलने के लिए तय कर रहा था। आप ये जानते हैं, जब हमने इसे खरीदा, मैंने इसे खरीदा जब जनता की सेवा की कंपनी के लिए काम करता था, और यहाँ ऊपर इस चीज को रख दिया और ऐसे ही नाम को रख दिया, क्योंकि ये भाई सेवर्ड और उन्होंने मेरे नाम को उसके साथ जोड़ दिया था जब उन्होंने वहाँ पर वसीयत नामे में इसे डाल दिया। जितना जल्दी मैं इन चीजों को साफ कर सकता हूँ करूँगा। जिस पर अभी हम हैं, यह कलीसिया इस बात की ओर बदलने जा रही है, एक समुदाय, और बस इसे दे दिया है, मेरे नाम को इससे निकाल देना है। मैं नहीं सोचता कि मेरा नाम उस कलीसिया के साथ होना चाहिए। इसे ब्रैनम टैबरनेकल नहीं होना चाहिए, केवल एक कलीसिया का नाम होना चाहिए, चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट या इसी तरह से कुछ, द टैबरनेकल ऑफ द लॉर्ड, देखिए, द ड्वेलिंग प्लेस, द हाउस ऑफ प्रेयर या ऐसे कुछ, और इसी तरह का एक नाम होना चाहिए। श्रोतागण उनके नाम को चुनते हैं। मेरा नाम, मैं बस एक मनुष्य ही हूँ, मेरा नाम इसके साथ उचित नहीं है, कुछ नहीं से ना होना। मेरे नाम को इसमें डालने का कारण था क्योंकि मेरा नाम वसीयत नामे में था, बिली ब्रैनम ने ऐसा कहा, समझे, इसे वहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं श्रीमान, इसे एक समुदाय कलीसिया होना चाहिए। यह यहाँ श्रोतागण के लिए होना चाहिए। और ये कलीसिया सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर कोई भी बोर्ड या खजांची या डीकन आपको नहीं कहेगा कि क्या करना है। ये कलीसिया पूरी तरह से वोट में है, जो आपको बताती है कि क्या करना है। यह बिल्कुल सही बात है। यदि वहाँ पर एक निर्णय लेना होता है, तो यदि आप अपने पास्टर को पसंद नहीं करते हैं और वहाँ पर किसी को, तो दो या तीन लोगों के पास पास्टर के विरोध में कुछ बात को लाते हैं, वे उनके डीकन खजांची के साथ नहीं खड़े हो सकते। वे बस आगे बढ़ते हैं। वे जो कार्य अधिकारी यहाँ पर हैं, उन्हें बस एक वोट मिलता है, बस इतना ही। यदि वह एक सहयोगी पास्टर है, उसे एक ही वोट मिलता है। वह बस एक सदस्य है, जो सामान्य सदस्यों के जैसा पीछे बैठा होता है। कलीसिया का सारा वोट ही मामले को ठीक करता है, और यह सही है। यही सही है। कोई भी डीकन बोर्ड पास्टर को बाहर नहीं रखता है, और न ही पास्टर डीकन बोर्ड को बाहर नहीं रखता है। कलीसिया इस तरह से करती है, और जो सारी चीजों के सार्वजनिक वोट में है, यह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। हमारे पास कोई भी बिशप नहीं है, हमारे पास कोई सार्वजनिक भविष्य बताने वाले नहीं है, हमारे पास यीशु है। आमीन। वो बिशप है, वह सार्वजनिक भविष्य बताने वाला है, वह मुख्य पास्टर है, वह राजा है, वह प्रभु है, वह चंगाई देने वाला है, वह सब और सब कुछ है, और हम उसके अधीन है जो उजाले में चल रहे हैं। आमीन। और वह किसी कलीसिया में बैठा है, क्या कलीसिया में, देह में, वहाँ कहीं तो बैठा है, क्या? पहला प्रेरित, यही वो मिशनरियां है। हमारे पास यहाँ कलीसिया में अभी एक छोटा सा लड़का जो वहाँ पीछे बैठा हुआ है, वो भाई मेरा एक मित्र है, मैं उसे क्रिज जेफरसिस बुलाता हूँ। यही वो पहला सबसे ऊंचा कहलाने वाला मिशनरी है। आप कहते हैं एक प्रेरित एक मिशनरी है, निश्चय ही जाकर शब्दकोश में देखें और आप पाएंगे प्रेरित का मतलब क्या होता है। मतलब होता है एक जिसे भेजा गया, जाकर देखें। और एक मिशनरी का क्या मतलब होता है, एक जिसे भेजा गया, एक ही बात है। सबसे ऊंचे क्रम में एक मिशनरी होता है जो प्रभु यीशु के लिए समुद्री यात्रा करता है। सबसे ऊपर पहले प्रेरित है, दूसरे में नबी। एक नबी क्या होता है, एक भविष्यवक्ता, न ही वह एक जो बनाता है, न ही एक प्रेरित जो मिशनरी जैसा बनकर और घर पर बैठा रहे, लेकिन वह एक जो सचमुच में एक मिशनरी है। और एक नबी एक भविष्यवक्ता है। वे प्रेरित, वे भविष्यवक्ता, वे शिक्षक, वे सुसमाचार सुनाने वाले, वे पास्टर, यही है वो जिससे मिलकर देह बनती है। फिर उस स्थानीय देह में वहाँ नौ आत्मिक वरदान होते हैं। उसमें से एक है बुद्धि, ज्ञान, दिव्य चंगाई, अन्य भाषा में बोलना, अन्य भाषाओं का अनुवाद करना। ये सारे विभिन्न वरदान जो एक स्थानीय देह में होते हैं। और ये प्रेरित, पास्टर, शिक्षक और सुसमाचार सुनाने वाले, ये सब यहाँ पर है निश्चित करने के लिए इन वरदानों में ये बातें ठीक तरह से काम कर रही हैं। यदि वे किसी गलत बात को ऊपर उठता हुआ देखते हैं, वे तुरंत ही इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये वचन के अनुसार नहीं है। कोई तो यहाँ पर चलकर आता है, कहता है, धन्य है परमेश्वर, मेरे हाथों में तेल है, यहाँ देखो, आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है और मेरे हाथों में तेल है। आप किसी को तो कहते हुए सुनेंगे, यह वचन के अनुसार नहीं है, यह सही बात है, आइए इसे लेंगे और यहाँ कमरे में जाएंगे, आइए वचनों में से होकर जांचेंगे, मुझे वचनों में से दिखाओ यह कहाँ पर है जो पवित्र आत्मा का प्रमाण है। एक कहता है, ओह, मैंने अन्य भाषा में बोला, मुझे मिल गया, मुझे वचनों में से दिखाओ कि यही पवित्र आत्मा का प्रमाण है, यह सही बात है। कोई तो स्त्री कहती है, ओह, प्रभु ने मुझे प्रचार करने को बुलाया है, मुझे वचनों में से दिखाओ कि स्त्री ने प्रचार किया है। जी हाँ, ओह, मैं जानता हूँ, प्रभु ने मुझे बताया है, उसने मुझे उस रात को आशीष दी, मैंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, मुझे वचनों में से दिखाओ कहाँ पर आपको ऐसा करना चाहिए था। तो ठीक है, मैं बस किसी और के जैसा ही अच्छा हूँ, और मैं एक मेथोडिस्ट हूँ, या एक बैप्टिस्ट हूँ, या एक प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, मुझे वचन में से दिखाओ परमेश्वर ने इसे कहाँ पर कहा है। समझे, यह सही बात है, यह वहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर एक पूरी तरह से खुली चुनौती है आप सदस्यों के लिए जो इस भवन के हैं। वहाँ पर एक पूरी तरह से खुली चुनौती है। अब यदि आप एक चीज को भी पाते हैं जो आप सोचते हैं यह गलत है, जिसे आज सुबह मैंने कहा है, एक चीज जो वचन के विपरीत है, आप कर्तव्य से बाध्य है कि आप मुझे इसे आज शाम को पुलपिट पर रख दे, यह सही बात है। आप इसे लाकर और इसे यहाँ रखें, मुझे वचन में से दिखाएं, बाइबल का वो पद जहाँ पर एक संप्रदाय था कि यीशु ने एक संप्रदाय को बनाया था, या इनमें से कोई भी चीज जो मैंने सिखाई है, जहाँ पर उसने कभी स्त्री को नियुक्त करके और एक स्त्री को कलीसिया में एक प्रचारक की नहीं रखा है, जहाँ पर उसने कभी जल के छिड़काव को, जल के उंडेलने को नियुक्त किया, या इसी प्रकार की चीजों को जिस पर मैं बोलते आ रहा हूँ, यहाँ पर रखें। फिर आज रात हम उसमें जाएंगे, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और उसके बाद सर्प का वंश और स्त्री का, तो ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। कितने लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं? ओह, मेरा मन कर रहा है जैसे मैं यात्रा करते रहूं। ओह, मेरा मन कर रहा है जैसे मैं यात्रा करते रहूं। अब इसे सचमुच प्रभु के लिए मधुरता से गाएंगे। स्वर्गीय घर और चमकदार और सुंदर है, मेरा मन कर रहा है जैसे मैं यात्रा करता रहूं। ओह, मेरा मन कर रहा है जैसे मैं यात्रा करते रहूं, करते रहूं। ओह, मेरा मन कर रहा है जैसे मैं यात्रा करते रहूं, करते रहूं। स्वर्गीय घर और चमकदार और सुंदर है, मेरा मन कर रहा है जैसे मैं यात्रा करते रहूं। अब वहाँ पर एक चीज है जिस पर मैं बाकी के समय के दौरान कुछ हफ्तों से मैंने पाया है, जो मेरे साथ एक परेशानी रही है, और मैं चाहता हूँ कि अब इसे मेरी कलीसिया के लिए अंगीकार करूँ। मैं वहाँ बतुल और अमेरिकी पेड़ के पीछे बैठा हुआ था, नीचे यहाँ पर अध्ययन कर रहा था। मैंने कहाँ पर मेरी गलती को किया है, किस बात ने मुझे गलती करने को लगाया, यह क्या थी? आप जानते हैं मैंने क्या जान लिया, कौन सी बात मुझे गलत करने को लगाती है। वहाँ पर जहाज के पार ऐसी एक बात है जिसके साथ कुछ तो जाता है। आप सब होने की कोशिश कर सकते हैं और अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर आप काफी अच्छा बन सकते हैं, और लोग मुझे यहाँ वहाँ से दबाव डालते हैं। वे कहेंगे तो भाई ब्रैनम आप यहाँ पर आ जाएं, प्रभु ने मुझे आपसे इसे कहने के लिए बताया है, तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, मैं आ जाऊंगा। ओह भाई ब्रैनम आप वहाँ पर मत जाना, यहाँ पर मत जाना, तो ठीक है, हो सकता है ये बेहतर होगा वहाँ पर मैं न जाऊँ, समझे? और आप नहीं जानते फिर क्या करना चाहिए, यही बात मुझे परेशान कर देती है। मैं वही जाता हूँ जहाँ पर प्रभु मुझे जाने के लिए अगुवाई करता है, और मैं परवाह नहीं करता कि कोई भी इसके बारे में क्या कहता है, समझे? ये बिल्कुल सही है, इसलिए मैं भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाता हूँ। और फिर मैंने एक और बात पर गौर किया है, मेरे बच्चे जो वहाँ नसों की बीमारी से पीड़ित हैं, रात को चिल्ला रहे हैं और इत्यादि, लोग अंदर और बाहर उनके घरों में हर समय पर जमा हो रहे हैं, लोग हर कहीं से आते हैं। मैं इस पर लोगों को दोष नहीं देता हूँ, वे बीमार लोग हैं, लेकिन हमें सब व्यवस्था को करना होता है। और यहाँ इस कलीसिया पर जब मैं यहाँ आकर एक सभा को रखता हूँ, क्योंकि मैं लगभग बाहर रहता हूँ, कलीसिया से बाहर जाता हूँ, क्योंकि लोग छोड़ते नहीं हैं इस पर और उस पर, मैं बहुत ही थका हुआ होता हूँ, और कभी कभी चंगाई सभा से बाहर आता हूँ और उनके साथ मैं सचमुच अच्छा नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ब्रैनम कहते हैं कि प्रभु ने कहा, जी हाँ, जब हम यहाँ पर होंगे वहाँ जाकर, ये अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमने बंदोबस्त किया है कि उनका ध्यान रखें, और अब केवल याद रखना, जो कोई भी यह चाहता है, मैं हर एक से मिलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास समय हो और लोगों से बातें करूँ। इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, और पहली बात आप जानते हैं, आपके पास वहाँ किसी को तो होना है, आपका सारा समय एक ही में चला जाता है, और आप दूसरे के पास नहीं जा सकते हैं, और यह सही नहीं है। लोग बहुत दूर दूर से आपके साथ कुछ शब्दों को बोलने के लिए आते हैं, और यदि परमेश्वर उन लोगों को देता है जो मुझ पर भरोसा करते हैं, यह विश्वास करते हैं, वे कुछ उचित समय को चाहते हैं ताकि सीखें, आपको उनसे ऐसे ही मुंह नहीं मोड़ना होता है यह कहते हुए, नहीं मैं किसी से नहीं मिलूंगा, ये ठीक नहीं है, कारण मैं इसे करने से डरता हूँ, क्योंकि कोई तो आकर और कहता है, अब प्रभु ने मुझे बताया भाई ब्रैनम कि आपको एक ऐसी ऐसी बात को करना चाहिए, यह प्रभु की अब इच्छा है, परमेश्वर मुझे उसकी इच्छा को बताएगा, समझे? श्रीमान किंग, कितने लोगों को आर ए किंग याद है, जो हमेशा यहाँ पर आते थे या नीचे होते थे? उसने कहा, मैं एक समय वहाँ ऊपर नाव को बना रहा था। उसने कहा, अब भाई ब्रैनम अब आप उस नाव को अपने खुद के विशेष विवरण के अनुसार बनाते हैं। कहा, मैं बना रहा था, या कोई तो एक मनुष्य एक समय नाव को बना रहा था, और वहाँ पर एक व्यक्ति आया। उसने कहा, तुम्हें नाव के ऊपरी भाग को इसे इस तरह से काटना चाहिए। तब उसने इस तरह से कोशिश की। दूसरे ने कहा, ओह तुम्हें इसे इत्यादि उस तरह से करना चाहिए, ऊपरे भाग को, हर एक चीज को, नाव को इस तरह से होना चाहिए, और झुकाव उस तरफ से, और आगे का सिरा और पीछे का भाग और वो पतवार। और उसने कहा, यह अब तक की सबसे भयानक चीज दिखाई दे रही थी। जब वो पूरी बना चुका, कहा, उसने बस नाव को लिया और वहाँ लपेट कर पिछवाड़े पर वापस रख दिया और उसने आड़े को लेकर एक और दूसरी नाव को काटना आरंभ किया। कहा किसी ने तो उसके पास आकर कहा तुम्हें इसे इस तरह से बनाना चाहिए था। कहा इस नाव को किन्हीं और लोगों के निर्देशन में बनाया गया था जो पिछवाड़े में पड़ी है। मैं इसे उसके अनुसार बना रहा हूँ जैसे मैं इसे बनाने के लिए सोचता हूँ। यह सही बात है। अब परमेश्वर यदि वो चाहता है कि मैं किसी चीज को करूं, वह मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। यदि आप सोचते हैं कि मैं गलत कर रहा हूं या इसी प्रकार से कुछ, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे वहां से बाहर निकाले, समझे, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को नहीं सुन सकता हूं। अब आप यहां हो सकता है कलीसिया पर आप सिर्फ जाकर हो सकता है एक या दो व्यक्ति को सुनेंगे, लेकिन यहां पर मुझे 10,000 लोगों के पास जाना होता है। भला इसे कैसे कर सकता हूं? तब मैंने कहा इससे पहले मैं किसी व्यक्ति को उत्तर दूं, मैं वहां बैठकर सही बात के लिए अध्ययन करूंगा, देखूंगा पवित्र आत्मा मुझे किस तरफ जाने के लिए अगुवाई करता है। तब मैं उस बहन को बताऊंगा, उस भाई को बताऊंगा यह कहां पर है, और यही मेरा निर्णय है, मैं उसके साथ बना रहूंगा। यह सही बात है, वहां पर उसके साथ बना रहूंगा। अब मुलाकात तय किए गए हैं, जो कोई भी मुझसे मिलना चाहता है पूर्ण रूप से तो ठीक है। यदि आप फोन करते हैं तो बटलर 2-1519 पर फोन करें, केवल टेलीफोन की किताब पर देखें और आप पाएंगे विलियम ब्रैनम बटलर 2-1519 आपसे मुलाकात के लिए बंदोबस्त किया जाएगा। इसे लिख दिया जाएगा, समय और स्थान को करने के लिए निश्चित किया जाएगा और मैं हर एक व्यक्ति से मुलाकात कर सकता हूँ, उनसे मिलूंगा, उनकी समस्याओं और आदि में सहायता करूंगा। लेकिन मैं ऐसे ही नहीं जा सकता हूं और एक के साथ एक दिन के लिए वहां पर रुकूं और 4 और 5 घंटों के लिए इस एक के साथ और अगले दिन सारी बातों को भूल जाऊं। हमारे पास बहुत सारा समय है। हम उनसे पूछेंगे कि वे क्या चाहते हैं और कितना समय चाहते हैं और इस बात को लेकर आएंगे और हर एक व्यक्ति से मिलूंगा, हमारे पास यह है। और जो व्यक्ति आपको फोन का उत्तर देगा वह यहाँ श्रीमान मर्सियर होंगे या श्रीमान गोल्ड, जो ठीक यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वे मुलाकात को सही रूप से ठीक मेरी किताब में लिखकर तय कर लेंगे और मैं हर एक व्यक्ति से मिलूंगा। यदि यह एक विशेष मामला है, यदि यह उस समय के दौरान जो बीमारों के लिए प्रार्थना की सभा होती है, आपके बीमार और पीड़ित व्यक्ति को यहाँ पर लाएं और उन्हें एक रात के लिए उनकी सुनेंगे, अब उन आपातकालीन मामलों के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन तब लगभग कुछ रात्रि के बाद मैं अपनी नई सेवकाई को आरंभ करना चाहता हूं और मैं उन्हें वापस इस कमरे में लेकर आऊंगा, क्योंकि आप मेरा दर्शन जानते हैं। कितने लोगों को मेरा दर्शन याद है, निश्चय ही आपको याद है, जो उस छोटे कमरे में छोटे तंबू का था। अब मैं मेडा को स्त्रियों को अंदर भेजने पर उस पहली रात्रि को अपने साथ अंदर लेकर जाता हूँ और फिर यह देखो यह किस तरह से उसके साथ वहाँ पर काम करता है। और फिर यदि ये उस तरह से सही कार्य नहीं करता है, तब मैं पीछे मुड़कर एक समय पर 2 स्त्रियों को भेजूंगा, 2 स्त्रियों को एक समय पर लाऊंगा, क्योंकि वे एक ऐसे स्थान के अंदर जा रहे हैं जहां पर बस एक पुरुष है, समझे। और इस कार्य प्रणाली से हमारे पास शुद्ध मन होना है, लेकिन शैतान के पास वहां पर ऐसा नहीं है, आप देखें, इसलिए वो उसके बारे में क्या सोचेगा, देखो इसलिए संसार क्या कहेगा। लेकिन यह एक सेवकाई है जो मैं आम लोगों के लिए नहीं बता सकता हूँ, कोई भी इसकी कभी नकल नहीं करेगा, आप समझे। नहीं श्रीमान, नहीं, मैं जानता हूँ यह ठीक अब विलय होने पर है। मैं देखता हूँ जैसे बस वहाँ पर पहुँच गया और थोड़ा रुक गया, ये ठीक वहाँ पर रखी हुई है। पिछली रात को मैं स्वप्न को देख रहा था, इससे पहले कि मैं सुबह को उठूं, भाई नेविल, मैं एक सपने को देख रहा था और मैंने सोचा सेवकाई, मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा था, लेकिन जो कुछ भी यह था, आप जो बातें होने वाली है उसके बारे में बात करें, मैंने कभी भी इस तरह से नहीं देखा है। मैं उठ गया और चिल्ला रहा था और स्तुति कर रहा था, मैंने मेरी पत्नी को मेरे हाथ को दे मारा इस तरह से, और वहाँ पर पड़ा हुआ बस परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। ओह, मैं केवल जानता हूँ वहाँ पर कुछ तो है, ठीक यहाँ बस वहाँ पर पहुँचने को तैयार है और इसे लेने को तैयार है। यह अब तक की बहुत ही महान बात होने जा रही है, यह बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कुछ तो महान करने जा रहा है। लेकिन अब हमें समझदारी से, बुद्धिमानी से पहुँचना होगा और ठीक परमेश्वर के वचन में सही है, ओह हम उससे प्रेम करते हैं। अब याद रखना, यदि आपका कोई भी मित्र है या कोई भी मुझसे मिलना चाहता है और मुझसे बात करना चाहता है कुछ तो छोटी बात के बारे में, व्यक्तिगत रूप से वे फोन करें बटलर 2-1519 और वहाँ पर एक मुलाकात के लिए बाहर स्थान का बंदोबस्त किया जाएगा। मैं वहाँ ऊपर उन्हें घर के आसपास नहीं मिल सकता हूँ और यहाँ भवन के आसपास, क्योंकि आप यहाँ पर आते हैं, मैं बहुत ही प्रचार करता हूँ और यहाँ पर बना रहता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत देर तक नहीं रहता हूँ और मैं बस आपको बहुत समय तक रोके रखता हूँ। जितना मैं रोक सकता हूँ ताकि हर एक वचन अंदर चला जाए, क्योंकि मित्रों केवल यही वो समय है जो हमें हमेशा ही करते जाना है। यह सब बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। हम ठीक वहाँ उस घाटी पर जा रहे हैं, ठीक वहाँ नीचे उनकी ओर देखो जो पिछले वर्ष से छूट गए हैं, जो यहाँ पर रहे थे, समझे? इसलिए हम उस घाटी पर जाएंगे, हमें इसे अभी करना है, इसे अभी किया जाना है, और आप इसी कारण से मैं आपको रोके रखता हूँ। आप कहते हैं तो ठीक है, यह इसके बारे में क्या वचन है? जी हाँ, पौलुस ने सारी रात को प्रचार किया, एक रात, और एक व्यक्ति इमारत से बाहर गिर गया और खुद ही मर गया। कितने लोग ये जानते हैं? पूरी रात भर पौलुस वहाँ पर चला गया और अपने शरीर को उसके ऊपर रखकर उस पर फैल गया, और उसका हृदय उस व्यक्ति के हृदय के साथ धड़कना शुरू हो गया। कहा, नहीं वो